ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कल आप लोग ने सुने थे कृष्ण बलराम ने मथुरा नगर दर्शन करने के लिए नगर में अपने साथियों के साथ प्रवेश कर चुके हैं और नगर दर्शन की करते हुए पूरे भीड़ के बीच में राज रास्ता में चलते हुए सबसे पहले जबकि उनको नंद बाबा ने मना किए थे किसी झगड़ा नहीं करना किसी कुछ नहीं करना सबसे पहले ओपनिंग किए मर्डर करके रास्ता में गए और यहीं से मर्डर किए दिन दोपहर में बीच बाजार में सारे लोग के बीच में। आप कल सुने थे तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। मर्डर करने के बाद उनका जो वस्त्र था वस्त्र को सब आपस में शरीर में डाल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण बलराम के एतादृश शक्ति का परिचय इतना परिक्रम इतना शौर्य तेजस्विता ये सब दर्शन करके पूरे मथुरा जनपद के प्रत्येक पूर्ववासी स्तब्ध चकित। खूब सुने थे उन्होंने अभी लगभग भगवान ने जब गोकुल आए गोकुल से दोबारा मथुरा गए लगभग 11 साल उन्होंने ब्रज में बिताए। उनमें से अनेक अभूतपूर्व पूर्व कर्म किए हैं लेकिन उनसे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक कर्म ऐसा किए थे जिसको ब्रजवासियों ने उनके माता पिता तक तो बोले ये क्या है ये तो बड़े अद्भुत कर्म है। मीटिंग बैठ गया पूरा ब्रज में बहुत बड़ा मीटिंग बैठा इस घटना के बारे में। ये अद्भुत कर्म था भगवान की 7 साल की उम्र में 4 कोस वाले लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ से कनिष्ठ मुद्री अंगूठी में उठा देना और ऐसे उठा दिया बहुत ताकत लगा करके नहीं आराम से बाएं हाथ में छोटे अंगूठी में उठा करके 7 दिन 7 रात तक घंटे 2 घंटा बड़े पसीना उतार के खड़े हो गए नहीं ऐसा नहीं पूरे पर्वत को। तो इस गिरिराज धारण लीला को यद्यपि सारे गोप गोपी सारे गाय बछड़े पशु पक्षी इंद्र ने उनको पूरा सर्वनाश करना चाहता था पूरे ब्रजमंडल को तहस नहस कर देना चाहता था तो इंद्र के इस प्रकार दंभ को दलन किए भगवान ने पर्वत धारण करके गोवर्धन धारण करके तो सारे ब्रजवासी पर्वत के शरण में गए, उनके नीचे रहे, कुछ नहीं हुआ उनका। लेकिन वापस आकर के उनका बहुत भारी मीटिंग बैठा कि कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बालक है, कैसे उठा सकता है। बहुत बड़ी मीटिंग बैठा था। और गिरिराजी धारण की लीला इस प्रकार है कि पूरे ब्रज में उनके कई पीढ़ियों से, उनके दादा परदादा के अमल से, सारे ब्रजवासी हर साल दीपावली की दूसरे दिन इंद्र के लिए एक यज्ञ करते थे, इंद्रध्वज यज्ञ करते थे। इंद्र के बड़ी भारी पूजा होता था, बड़ी भारी भोग लगाते थे, आरती करते थे, एक झंडा गाड़ करके उसको इंद्र मान कर करते थे, और क्या। और मानते थे कि हम लोग तो सब वैश्य हैं, गोपालक हैं, हमारा गाय घास फूस खाएंगे, खेती होगा, बारिश होने से सब कुछ होगा। तो इंद्र बारिश के डिपार्टमेंट हेड है, तो उनकी कृपा होगा तो प्रचुर परिमाण में वर्षा होगा, वर्षा होने से घास होगेगा तो हम लोग का गाय घास खा के सुख में रहेंगे। इसलिए प्रतिवर्ष बड़ी उत्सुकता से, बड़ी भारी बजट पास करके इंद्र यज्ञ, इंद्र पूजा उत्सव करते थे। भगवान ने जब प्रकट हुए, आए इस गांव में, इस गांव के जितने ब्रज के गांव में जितने मनुष्य थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी का प्राणधन वही बन गए। अब जो भगवान सारे संसार को उपदेश दे करके समझाते हैं, कामस्तस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देव देवियों का पूजा करता है, उनका बुद्धि समझो मारा गया, माया ने हर लिया। मुझे छोड़कर दूसरे देवता को पूजा करते तो बुद्धू है, जब मैं हूं दूसरे के पास आएगा क्यों। लेकिन लोग जल्दी से अपने काम फल प्राप्त करने के लिए सारे देव देवियों का पूजा करते हैं। भगवान ने स्वयं इस पूजा को बोलते हैं अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है। भगवद गीता में सीधा रोक ठोक बयान अडर लगाए, बोले देव पूजा अविधि है, विधि नहीं है। अब लोग बोलेंगे भाई आप हमको सिखाते हैं ये विधि नहीं है, आपके गांव वाले, आपके घर वाले तो पूजा करते हैं इंद्र का, ये कौन सा बात है भाई। आपके पिताश्री, आपके ताऊ दादा, सारे आपके गांव वाले सारे इंद्र तो देवता है ना, देवराज है, उनको बड़े भारी रकम से पूजा करते हैं, उनको क्यों मना नहीं करते। तो भगवान ने सोचे बात तो सही बात है, हमारे गांव वाला ही से देव पूजा करते हैं, मैं दूसरे को क्या बताऊं, मुझे सब लोग हंसेंगे। बोले पहले उनको बंद करो भाई। तो भगवान ने सोचे कि बंद कराऊं, थोड़ा बंद कराने के लायक मेरा हो जाए, क्योंकि भगवान ने तो बछड़ा चरा रहे थे 3 साल के बाद, थोड़े बड़े हुए तो गोपालक बन गए, तो प्रमोशन हो गया, गाय चराने लगे, तो अब सोचे अब ठिकाने लाना है उनको सब। तो एक दिन गाय चरा करके जब वापस आ रहे थे सारे गोप सखाओं के साथ, मलदेव के साथ, शाम के समय आके पहुंचे ब्रज में, तो पूरे इष्ट गोष्ठी बैठा था, सारे बड़े बूढ़े सब मिल करके भारी मीटिंग बैठा था शाम के समय में। मीटिंग का एजेंडा क्या था, विषय वस्तु था कि अभी काल गिरिराज की पूजा है, सभी अपने अपने घर लीप पोत करके धूम सब सफाई किए हैं, अनेक अनेक पकवान बनाया गया है, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इतने बड़े वार्षिक उत्सव है, इसके बारे में चर्चा चल रहा था। बाकी सब गाय लेकर के गोष्ठ में चले गए, बाकी सर ग्वाल बाल चले गए, लेकिन लाला ने, कृष्ण ने सीधा कहीं नहीं गए, आकर के देखे पूरे भारी मंडली बैठे हुए हैं मीटिंग में, सीधा आकर के सबके प्यारे थे, आकर के अपने बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा बोला चलो लाला आ गया घूम घाम करके, उनको प्यार से अपने गोद में बैठाया, उनको मुख चुंबन किया नंद राय ने, तो फिर अपना मीटिंग में चालू रहा। लेकिन यो बच्चा तो बड़ा चंचल है, खाली थोड़ी बैठेगा। वो उनके दाढ़ी की पकड़ते पकड़ते बोला बाबा ये कहा कि भारी मीटिंग बैठा है, कहा कि सब क्या बातचीत चल रहा है। नंद बाबा ने उसको ध्यान नहीं देते, बच्चा है क्या समझेगा ये मीटिंग के बारे में, अभी चल चल कर आया जंगल से, अभी खा पी कर ठीक हो जाना, थोड़ा आके मेरे पास बैठ गया, चलो किसी को बुलाऊंगा, उनको खिला पिला करके सुला देना चाहिए। लेकिन वो तो पूछने लगे, बाबा बताओ बताओ क्या मीटिंग है बताओ, मुझे क्यों नहीं बताते, मैं तो आपके पुत्र हूँ, आपका आदमी हूँ, कोई पराया थोड़ी हूँ, क्यों नहीं बताएंगे मुझे। अब ऐसे ऐसे बात बोलने लगा तो बाबा जी को हद हो गया, बोले बोलना पड़ेगा बेटा को, तू क्या समझेगा छोटा सा, नहीं अब देखें तो बात तो बढ़िया करता है, बताना पड़ेगा, बाकी से बोल दे बता दो उसको, लाला जिद पकड़ रहा बताओ। तो नंदा बोले बेटा ये कुछ नहीं, हमारा एक वार्षिक उत्सव होता है, उसमें देवराज इंद्र का पूजन होता है, तो इसी विषय में चर्चा हो रहा है, बहुत भारी सब पकवान आदि बना गया है, सब व्यवस्था हुआ है, काल कैसे करेंगे इस बारे में चर्चा हो रहा है, तू तेरे इसमें क्या है। तो बोले बाबा मुझे कुछ नहीं, लेकिन ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, क्या जरूरी है इंद्र की पूजा करना। अरे बता, इंद्र भगवान बारिश देते हैं, देवताओं के राजा है, उनकी कृपा से वर्षा होता है, वर्षा होगा तब तो हमारे घास होगा, हमारे गाय सब है, गाय घास खाएंगे, खेती होगा, सब होगा ना, तो इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। तो भगवान ने तो छोड़ने वाले थे नहीं, वही गोद में बैठे बोले बाबा आप पूजा करते हैं, आगरा वाले और दिल्ली वाले इसे पूजा करते हैं क्या, हमारे गाँव के पास में से। बोले तो पता नहीं, बोले वो तो नहीं करते, तो वहाँ बारिश नहीं होता क्या, समुद्र में बारिश क्यों होता है, ये कौन सा पूजा करते हैं, तो पानी भरा हुआ है फिर भी क्यों बारिश होता है इधर। अब बाबा का दिमाग आउट, बोले क्या बताऊं, हम पूजा करते हैं बारिश होता है, वहां तो कभी पूजा नहीं करते एक भी, वहां बारिश होता है। जहां अन्य धर्म के लोग है जो देवताओं को मानते ही नहीं, देवी देवते नास्तिक है, वहां क्या बारिश नहीं होता। बाबा चुप, बारिश सब जहां, तो यहां की बारिश के देव तो पूजा करते नहीं, उल्टी मानते नहीं उनको, वहां भी बारिश होता है, तो आप क्यों पूजा करते हो। अब क्या उत्तर देंगे, बोले बाबा ये इंद्र जो है वो तो एक पोस्ट है, वो काम करके पोस्ट मिला उसको, सब कर्म के अधीन है, 100 यज्ञ किया उसके पोस्ट मिला, सतकतु है उसमें क्या है, और वो डिपार्टमेंट है उनका है बारिश करने का, उनका काम है करेगा, हम उनको पूजा क्यों करेंगे, हम उसका काम है करना सब जगह में करेगा। अरे बाबा वो गुस्सा करेंगे, गुस्सा क्या को करेगा, बाकी जो तो गुस्सा को नहीं करता। आप इस प्रकार भगवान ने युक्ति दिए, बोले पिताजी ये तो शास्त्र वचन है कि सारे प्राणी आपने अपने कर्म फल के भुगता है, कोई भी आपने किया हुआ कर्म के फल से बच नहीं सकता, भले आपने इसी पुणे में कुछ काम कर लिए, वो अमेरिका जाकर रुकेंगे, बोले कर्मफल ये पुणे वाला थोड़ी आ पाएगा, उसको वीसा नहीं मिलेगा, प्लेन में आ पाएगा थोड़ी, कर्मफल वहीं रहेगा, लेकिन नहीं वो वहीं भी जाकर पहुंच जाएगा, किसी जगह में कर्मफल आपको छोड़ेगा नहीं, पहुंच जाएगा। तो जब किसी प्राणी का जन्म होता है उसी समय से भगवान ने कहते हैं 6 चीज जन्म के साथ में उनका कपाल में लिखा रहता है, जन्म से पहले वो 6 चीज लिखा रहता है, ये विधि के विधान है, कपाल लिखन कहते हैं उसको। 6 चीज क्या है, एक है जन्म और मृत्यु, सुख और दुख और जस और अपजस, मान अपन जो भी कहो, ये जो 6 चीज है आपको किसी वंश में कब कहां किस प्रकार जन्म होगा, कैसे किस प्रकार कब आपका मृत्यु होगा, आपको कितने सुख मिलेगा किस प्रकार का, कितने दुख मिलेगा किस प्रकार का, कितने आपको मान मिलेगा कितने आपको अपमान मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का पहले से फिक्स एडवांस बुकिंग हुआ है आपके लिए, आप इसे कोई बदल बदल नहीं कर सकते, सभी प्राणी के लिए फिक्स है। तो जब वो फिक्स है फिर कहा कि ये सब कर रहे हैं, वो क्या करेगा, इंद्र क्या कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने युक्ति दिए तो सारे बड़े बूढ़े जितने ब्रजवासी बैठे थे सब मान लो, बात तो सही कह रहा है बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा है लाला, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तब लाला क्या करें फिर, हम इतने सारे व्यवस्था किए हैं, झंडा गाड़ दिए हैं और इतने सारे पकवान पूरे गांव वाले बनाए, सब पूजा के सामग्री किए, हर साल करते हैं, क्या करेंगे, बंद कर दें ना? नहीं, पूजा तो करेंगे ना, करेंगे किसको करेंगे पूजा, हमारा तो इसी को देवता था ना, ये क्या देवता है, फालतू देवता है, फिर किसकी पूजा करेंगे ना, हम लोग सब वैश्य है, हमारा धन है गोधन, गाय की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम पलते हैं बचते हैं, तो जो गोवंश को वृद्धि करे, जो गाय की उपकार करे, जो गोवंश को बढ़ाने के लिए मदद करे, ऐसे कोई देवता चुनेंगे, उनको पूजा करेंगे, हमारे इष्ट तो गए हैं, गो है ना, गाय है ना, ना हाँ, तो कौन है ना, यहाँ पास में एक जो पर्वत है जहाँ पे हमेशा गाय चराने हम जाते हैं, कितने सुंदर सुंदर घास है, कितने झरना है, कितने गुफा है, कितने पेड़ है, फूल है, फल है, और सारे लाखों संख्या में गाय जाकर के इससे चरते हैं, तृप्त होते हैं, हम भी जाकर वहीं तृप्त होते हैं, वहीं बैठते हैं, फल फूल पानी सब लेते हैं, तो इसी पर्वत का नाम भी क्या है, गोवर्धन, जो गोवंश को वृद्धि कराए, जो गोवंश को बढ़ाए वृद्धि कराए, ऐसे उनका नाम भी ऐसा है, काम भी ऐसा है। तो हम जो सब गाय हमारा धन है, तो क्यों नहीं इसी देवता की पूजा करेंगे, जो हमारे गाय को बढ़ाता है, पोषण करता है। सारे ब्रजवासी गोपाल बोले बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हमारे इतने परंपरा से करते आ रहे थे भाई, कैसे करें, पूछना पड़ेगा हमारे कुल पुरोहित को, हमारे जे ब्रजवासियों के कुल पुरोहित थे सांडिल्य मुनि, बोले उनको पूछना पड़ेगा, ऋषि जी को पूछना पड़ेगा, उनको हमारे कुल परंपरा में जो हैं वो क्या कहते हैं, वो तो मीटिंग में बैठे ही थे मुनि जी, मीटिंग में बैठे थे, जैसे उनको बोले उनको पूछना पड़ेगा, वो खड़े हो गए, नहीं नहीं लाला जो कह रहा है वही मैं उनका साथ हूँ, वो तो जानते थे, बाकी कोई जानते नहीं लाला कौन है, लेकिन उनको तो पता था भाई यही तो परम सत्य है, वो कुछ बोले वो कुछ अलग हो सकता, वो तुरंत उठकर बोले बिल्कुल सही, वो जो बोल रहा है वही करना है, तब सर्वसम्मति का में पास हो गया कि गोवर्धन की पूजा करेंगे, राजी हो गया, ठीक है इंद्र पूजा रिजेक्ट, अब गोवर्धन की पूजा करें। लेकिन बात अभी आकर अड़ गया भाई, अभी तक कोई डीटी वर्षी मानवाल में, कोई पूजा पद्धति किताब में, कोई पुरोहित सर्वस्व में, कोई किताब में, कोई पद्धति लिखा का पहाड़ को कैसे पूजा होता है, सारी देवी देवताओं के पूजा के विधान लिखा है, बाकी जितने सारे भगवान देव विग्रह सबके पूजान के विधान लिखा है, लेकिन ये पहाड़ को कैसे पूजा जाए तो कोई तो किए नहीं, ये पहली बार हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगा वो तो। तो सब खड़े हो गए, बोले ब्राह्मण को, ब्राह्मण बोला हम जानते नहीं इसमें कैसे पूजा करें, क्या पूजा करके विधि विधान के पहाड़ को कैसे पूजे, तो भगवान स्वयं आचार्य बने, सारे ब्राह्मण पंडितों को उन्होंने सिखाए कैसे पहाड़ को पूजा करना होता है, नीति नियम उनका विधि विधान, वही लाला ने गोद में बैठे बैठे सब सिखाया, हाँ कैसे पूजा करना होता है, बोले मैं बताता हूँ, सब सुनिए नोट कीजिए, हर साल करेंगे फिर, बोले क्या करें ना, सारे सामग्री पूजा सामग्री भोगराग लेकर के छकड़ा में बैलगाड़ी में लोड करके चलिए, वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके सबसे पहले गिरिराज जी के तलहटी में एक बहुत सुंदर गिरिराज जी के चरण से शिला लेंगे, उस शिला को सबसे पहले प्रणाम करके अभिषेक करेंगे, पंचगव्य से, पंचगव्य जानते हैं किसको कहते हैं, आजकल तो उसे जानते नहीं, गाय से पांच चीजें निकलता है जो सबसे पवित्र माना जाता है, भगवान भी कोई भी शुद्धि अशुद्धि हो पंचगव्य पीने से तुरंत शुद्ध माना जाता है, तो पंचगव्य में स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत में स्नान कराएंगे, फिर तीर्थ जल से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, इस प्रकार विशेष अभिषेक कराएंगे, सब नोट कर रहे थे। फिर क्या करेंगे, ना स्नान हो जाने के बाद फिर उनको वस्त्र आभूषण पहनाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर भेष करेंगे, चंदन टीका में चर्चित करेंगे, भेष करेंगे, फिर क्या करेंगे ना पुष्प श्रृंगार करेंगे, पुष्पमाला देंगे, फिर क्या करेंगे ना श्रृंगार हो जाने के बाद फिर भोग तैयार हो गए ठाकुर जी, फिर भोग लगाएंगे, जितने सारे आइटम बनाए सारे आइटम धर देना, क्योंकि गिरिराज तो छोटे मोटे है ही नहीं, लेकिन ये पहाड़ थोड़ी खाएगा, अरे देखना सब कैसे खाएगा, अभी तक इंद्र को भी देखा, कोई खाया देखा नहीं ना, ना नहीं अब देखना, चलो तो सही। बोले क्या सही में पहाड़ का, अरे चलो तो सही, सारे आइटम ले गए सब, बोले धर देना, और सारे धूप दीप के साथ में तुलसी पत्ता डाल करके और पुरोहित जो हैं उनके मंत्र पढ़ करके उनका आवाहन करेंगे, हम सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, गिरिराज हमारे जो है भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, सब प्रार्थना करेंगे। तो पहाड़ को प्रार्थना करना है, अरे देखना चल करके, ऐसे भोग करें, भोग लगाएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे, इसके बाद पुष्पांजलि देंगे, फिर प्रणाम करेंगे, उनसे वरदान प्राप्त करेंगे, फिर भंडारा होगा, ऐसे सब विधि विधान बता दिए। अब सब चल पड़े, लाला स्वयं कैप्टन है, लीडर बनकर के गए और सबको लेकर साथ में गए, जैसे जैसे विधि बताए थे सब जाकर के इसे अभिषेक हुआ और उनका श्रृंगार हुआ, पुष्प आभरण दिए, उसके बाद में चंदन आदि अर्चित करने के बाद फिर भोग लगाने की बारी आ। भोग तो पहले से महीना भर से तैयार करते थे, कई पकवान बनाए, सब धर दिए, बहुत बड़े संख्या में कई प्रकार के आइटम, ब्रजवासी लोग तो खूब मीठा खाते हैं, लड्डू कचौड़ी खीर मालपुआ खूब खाते हैं, अब धर दिए सारे फ्राई आइटम और मीठा आइटम सब धर दिए, अब बोले आप मंत्र पढ़ो, आप सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज जी को, गिरिराज भाई जैसे सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे तुरंत देखे बड़े शब्द हुआ, क्या खोल के देखते हैं, अरे बाप रे, दो मोटे मोटे हाथ पहाड़ से निकल रहा है, बिल्कुल मोटे मोटे हाथ, बोले केवल हाथ आ रहे, मुंह कैसे खाया, मुंह निकल पड़ा, बड़े मुंह और बड़े बड़े हाथ, अरे हाथ आया, फटाफट लेकर खाने लगा। सारे ब्रजवासी देख रहे थे, ये तो बिल्कुल उनका मुंह के आकृति प्रकृति हमारे लाला बिल्कुल सेम है, केवल इतना फर्क है ये छोटा ये बड़ा, बाकी हूबहू वही है ना, नहीं ये क्या है भाई, किसी को समझ नहीं आ रहा था, चलो वो भी लाला जैसा है लेकिन बड़े लाला है ये, बड़े मुख है, बहुत विशाल हाथ है, बड़े मुख है, ऐसे मर पूछ लगाए सब कुछ किए, हाँ खा रहा है, सारे खा गए, बोले और लाओ और लाओ, वो दौड़ दौड़ के जाकर ला रहे थे, जितने जिनका घर में था आइटम सब ला कर दिए, सब खाया, बोले पानी पियेंगे, अरे बाबरे क्या पानी पियेंगे, जितने कुंड था चारों तरफ झरना के कुंड, सारे कुंड के पानी पी गए, सब देख रहे थे उनके सामने, इतने भारी भोजन इतने भारी पान किए, सब तो विश्वास, बोले विश्वास हुआ ना, हाँ विश्वास, ये तो असली देवता है, असली देवता तो ही, हम अभी तक बेकार टाइम वेस्ट कर रहे थे, इनको नहीं पूजे थे, अब उनके सामने भोजन किए, बोले अब आरती करो, तो सारे धूप दीप आरती सारे लेकर के बड़े वाद्य के साथ में मंत्र के साथ में महा आरती हुआ गिरिराज जी का, आरती करके पुष्पांजलि अर्पण किए, चरण में दंडवत किए, हाथ जोड़ करके खड़े रहे, तब गिरिराज जी ने फिर आवाज करके बोलने लगे, बोले देखो सारे ब्रज के अधिवासी, मैं आपके पूजा से भोग से अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, क्या चाहिए मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आपके सब मन इच्छा पूरा कर दूंगा आज, यहीं पे सब आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा, जिसका मन में जो है बोलो। तो गिरिराज जी जो अनाउंस किए थे, छोटे गिरिराज जी खड़े थे उनके पास में, वो अनाउंस किए, बोले देखो गिरिराज बाबा अभी प्रसन्न है और सबका मनोकामना पूरा कर देगा, आप बोलो बत, शर्म लगेगा तो हाथ जोड़ के अपने मन से चिंतन करो, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके जिसका मन में जो इच्छा है, आप मन में केवल चिंतन मात्र करो, देखना सब पूरा हो जाएगा ना, सही में अगर हम लोग को चांस मिलता तो कितना क्या क्या कर लेते, चिंता है नहीं, लेकिन लाखों ब्रजवासी थे, सारे छोटे से बड़े तक, सभी ने, भगवान बोले सब प्रार्थना करो, गिरिराज जी चाहते हैं सबका इच्छा पूरा करने के लिए। सब बड़े बूढ़े से लेकर छोटे तक सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके, आग बंद करके, जिसका मन में जो इच्छा था सब प्रार्थना करने लगे। कोई थोड़ा लंबा था, कोई जल्दी किया, करने लगे, सबका मन में प्रार्थना करने लगे। और गिरिराज जी सबका बोले, गिरिराज जी सब सुन लेंगे, हमारे अंतर्जामी है सब सुन लेंगे। तो असली में तो अंतर्जामी खड़े थे इधर, तो लाखों ब्रजवासी सब अलग अलग हाथ जोड़ करके, कितने लड़के थे, लड़की थे, बूढ़ा थे, बूढ़ी थे, युवक युवती, सब सब अलग अलग, कोई किसी को बोला नहीं, सब अपने मन से चुप रह करके, हाथ जोड़ करके अपने अपने मन इच्छा प्रकट कर रहे थे। लेकिन लाखों अलग अलग प्रकार के लोगों का जो अंतर्जामी गिरिराज, वो देखे कि सबका इच्छा एक है, एक ही इच्छा, लाखों लोग ने यही इच्छा सभी का, किसी का मन में दूसरा कामना नहीं है। अच्छा क्या कामना, हम लोग होते तो सभी का 100-100, 200-200 कामना हो जाता, लेकिन उन्होंने सभी ने इतने चांस दिया गया, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने जब प्राप्ति के लिए उनको याचना किया गया, सब ने अपने मन से चुपचाप प्रार्थना की, लेकिन सारे प्रार्थना मिलाकर खोल के देखो सभी का एक प्रार्थना, कोई दूसरा कोई नहीं मांगा है। अब किसी को पता नहीं, वो सोचता था मैं ये मांगा, दूसरा वो कुछ मांगता होगा, तीसरा ये कुछ मांगता होगा, तो ये कुछ मांगती होगी, लेकिन सुनने वाला तो सुना कि सभी का एक मांग, जानते क्या मांग कर रहे थे, सभी का मन में एक ही कामना था। यही तो ब्रजवासी के प्रमाण है, यही उनका लक्षण है, सभी का मन में केवल एक ही मांग था, हाथ जोड़ के चुपचाप मांग रहे थे कि ये जो हमारा छोटे लाला कृष्ण है वो सकुशल रहे, वो प्रसन्न रहे, उनका भला हो, बस मेरा मन में यही इच्छा है सभी ने, और दूसरा कोई उनका मन में इच्छा नहीं था। गिरिराज जी सब देखे कि हजारों लाखों ब्रजवासियों का मन में केवल एक ही मांग है, तो मांग तो पूरा हुआ ही। तो बोले अभी भंडारा होगा, प्रणाम किए, भंडारा करेंगे, भंडारा की विधि है। बोले सबसे पहले किसको खिलाएंगे, गाय को। देखिए भोजन कराने सबसे पहले गाय को कराना है, सुंदर सुंदर घास और जो गो ग्रास सब लेकर आए, पहले सब जितने गाय बछड़ा थे सबको तुष्ट कराए भोजन करा करके, उसके बाद ब्राह्मण, उनके बाद छोटे छोटे बच्चे थे वो, उसके बाद में बाकी जो थे, और लास्ट में जो सर्विस करने वाले वो खाएंगे। इसी विधि से खूब भंडारा हुआ, अब बहुत सारा आइटम था, गिरिराज जी ने सब खाए, लेकिन खा के कुछ खत्म नहीं हुआ, भगवान को भोग लगाने से ही फायदा है, अगर भगवान सचमुच खा लेते ना तो हम कभी भोग नहीं लगाते। हाँ भगवान कुछ खाते नहीं, आज चीज बना रहता, इसलिए हम भोग लगाते तीन तीन बार, चार चार बार, अगर आधा कम हो जाता तब भी हम बजट कम कर देते, कम हो जाता है तो भगवान जानते हैं हमारा मन इच्छा कि अगर मैं खाऊंगा वो लगाएंगे नहीं, मुझे भोग देंगे नहीं, तो इसलिए वो खाते नहीं, हमको दे देते हैं, लेकिन देते हैं शुद्ध करके देते हैं, भगवान पूर्ण है ना, भगवान इतने ऐसे पूर्ण है, वो सारे वो खा लेंगे लेकिन सारे ऐसे बचा रहेगा। तो सभी ने प्रसाद खाए, सब प्रसन्न हुए, तो लास्ट में भगवान ने एक और घोषणा की, अनाउंसमेंट किए, बोले देखो अब लास्ट गिरिराज पूजा का लास्ट आइटम बाकी रहा ना, क्या है, ये आइटम पूरा नहीं करेंगे तो सारे पूजा बेकार है, बताओ फिर क्या करेंगे, ना सबको परिक्रमा करना होगा। कोई बोले नहीं मेरा पैर खराब है, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं चल सकती हूँ, चल सकता हूँ, भगवान बोले कंपल्सरी, कोई अगर परिक्रमा नहीं किया तो गिरिराज जी देखते हैं कितने भारी जंगल है, उसमें बहुत सांप है, उनको सांप काट देगा, आज ही काट देगा, सब मरेंगे, रे बाप रे डर गए, नहीं नहीं हम तो करेंगे, धमकी दे दिए भगवान, जो परिक्रमा नहीं करेगा उनको सांप काटेगा, अब डर गए, बोले करना है, गाय बछड़े तक को भी लेकर के परिक्रमा किए, जो पैदल में करे पैदल में करे, जो गाड़ी में करे गाड़ी में करे, लेकिन करना है सबको, बाल बच्चे सबको लेकर के पूरे समुदाय ब्रजवासी परिक्रमा के भगवान ने स्वयं लीड किए। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो गोवर्धन पर्वत देवलोक से आया, सालमली द्वीप से आकर के कई युग से वह पड़ा था, पर्वत है पहाड़ पड़ा था कई पहाड़, कोई उनको ना प्रणाम करते थे ना पूछते थे ना परिक्रमा करते, कुछ नहीं करते थे, ऐसे पहाड़ी पहाड़ था कई पहाड़ है। स्वयं भगवान परमेश्वर आकर के अपने गांव वाले को अपने निजजनों को साथ में लेकर के अपनी प्रयास से अपनी योजना बना करके पूजा के विधान निर्दिष्ट करके इस गोवर्धन को पूजा किए, सम्मान किए, आरती किए, उनके परिक्रमा किए और करवाए। अभी तक तो लाखों हजार लोग करते ही रहते हैं, पहले किसी को पता था। तो जिस काम को भगवान ने स्वयं शुरू किए तो कैसे बंद हो सकता, और चलता है। तो इसलिए आज भले आप पुणे की इस हल के सामने बैठे हो, लेकिन आप लोग के जो कृष्ण के अनुयायी भक्त हैं तो उन लोग यहाँ बैठे बैठे यहाँ गिरिराज को अभिषेक वहीं कर रहे हैं, अभी चल ही रहा है गिरिराज का, उसमें आते समय देखा तो उस साइड में चल रहा है। और मुझे सुना गया कि अभी लास्ट में अब अन्नकूट भी होगा, अन्नकूट भी भोग लगा करके उसकी परिक्रमा करेंगे, भोग बांटेंगे। ठीक है, भगवान ने जिस प्रथा को शुरू किए हैं अगर भगवान के आदेश पालन करके हम इसको करेंगे तो भगवान की कृपा तो मिलेगा ही, कहीं भी करो भगवान तो सर्वत्र है। इसी प्रकार के विधान के अनुसार अगर आप गिरिराज जी की प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उनके प्रसाद पाएंगे तो। लेकिन एक बात, हम तो ये सब करते हैं लेकिन हमारा मन में जो इच्छा है वो भी उनका तरह होना चाहिए ना, ये सब गड़बड़ होता है इसी में। चलो, इस प्रकार गिरिराज जी की पूजा किए थे, उसके बाद में तो इंद्र को जब खबर मिला तो बहुत गुस्सा हो गया और एक्शन लेना चाहा, पूरी ताकत लगाया उन्होंने पूरा ब्रज को ध्वंस कर देने के लिए। यही होता है देवता लोगों के लक्षण, कई पीढ़ियों से हर साल उनको सम्मान करते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, एक साल वो भी दूसरा कोई समझाने पर बंद कर दिए, तो इतने गुस्सा आया को मार देना चाह सबको। और बाकी आसपास के गांव वाले एक बार भी नहीं पूजा किए, उनको भोग लगाते थे, उनको कुछ नहीं कर रहा था। तो जो भी हो, जब इंद्र के कोप किया, ऐसे एक्शन लेना चाहा, तो भगवान ने गिरिराज को धारण किए, उठाए और सारे ब्रजवासियों को रक्षा किए। 7 दिन तक गिरिराज को धारण किए, तो इंद्र ने फिर आके माफी मांगा, बहुत बड़ी कथा है। तो इस प्रकार हम कितने विग्रह को प्रतिष्ठा करते हैं, उनके पूजा कर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये जो विग्रह जो साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रतिष्ठा हुआ शुरू हुआ, ये है साक्षात गिरिराज। बाकी मंदिर में जाओ अभी दर्शन बंद है, पट बंद हो गया, बाद में खुलेगा। गिरिराज जी ऐसे भगवान है 24 घंटा खुला है दरवाजा, दरवाजा ही नहीं खुला है, जब चाहो 24 आवर तैयार है आप कृपा करने के लिए। तो ऐसे परम दयालु ब्रज के मुकुटमणि भगवान के प्रथम सेवक स्वयं राधा जी ने गिरिराज के लिए एक पद गाई है, हंतायम आद्रिय बड़ा हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। स्वयं राधा जी ने कहते हैं, सखी देखो तो सही गिरिराज जी की क्या स्थिति है, क्या न तो हरिदास में वर्य श्रेष्ठ है, हरिदास वर्य शास्त्र में कहते हैं हरिदास 3 है श्रेष्ठ हरिदास में, कौन कौन है, एक तो उद्धव जी हैं, दूसरे युधिष्ठिर महाराज हैं और तीसरे गिरिराज जी हैं। बोलते ये भी हरिदास वर्य हैं। और वो क्यों इतना आनंद में है ना, क्योंकि प्रतिदिन भगवान कृष्ण बलराम के चरण स्पर्श मिल रहा है उनको, वही घूम रहे हैं उनके ऊपर जाकर के, इसलिए इतने आनंदित हो रहा है, उल्लसित है और हर प्रकार से पूरे ब्रजवासियों को, पूरे गाय बछड़े को इतने भली से पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ये रहे गिरिराज। आज भी ब्रज में कहते हैं भगवान तो चले गए, सब गए, लेकिन 3 चीज केवल साखी मात्र रह गया। एक तो है जमुना जी जो सुख भी गई, यमुना जी पहन रहे हैं, और ब्रज के धूल और तीसरे गिरिराज जी, वो भी घटते जा रहे हैं, शायद जमाना आएगा लोग जाकर बोलेंगे यही गिरिराज जी थे, अभी नहीं है, अभी आपके भाग्य में देख सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, जब तक समर्थ है कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के वो भी चांस नहीं मिलेगा, है ना। नहीं तो इस प्रकार कहीं भी रह करके उनको अपने तन से मन से धन से उनको पूजा प्रणाम और परिक्रमा करके आप ये फल को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की। तो अभी हम चलते हैं अपना जो चल रहा था सीरियल, उसको चालू करें। अब मथुरा के राज रास्ता में जा करके चलते चलते सबसे पहले ओपनिंग में मर्डर केस किए करके अभी सारे चकित लोगों को आश्चर्य करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लगा कि मच्छर मारा। आगे बढ़ रहे हैं, मर्डर करने के बाद किन धोबी था, रंगकार था, बहुत सारे राजकीय वस्त्र रत्न खचित रंग बिरंगे वस्त्र लेकर जा रहा था, तो सारे बालक और राम श्याम को ले मिल करके सारे वस्त्र उठा करके अपना अपना हिसाब से पहन लिए। पहनना तो आता नहीं था, सारे बेढंगा था, इधर उधर लपट लिए थे और चल रहे थे। भगवान के मन में होता था अरे सब पटका मार के आए थे, अच्छा है सिटी में जाएंगे तो अच्छा कपड़ा तो मिला, लेकिन फिटिंग नहीं है, फिटिंग नहीं कि फिटिंग होता कपड़ा थोड़ा अच्छा लगते हम पहन करके। तो भगवत इच्छा से थोड़े ही आगे गए हैं, क्या हुआ, सारे मथुरा के नगर की जानते हैं उस गली में बाजार के साइड में मेन बाजार में एक शॉप था, इस शॉप में एक टेलरिंग शॉप था, एक टेलर रहता था, वो रॉयल टेलर था, इतने प्रसिद्ध था उनका, उनके सिलाई की कला केवल मथुरा नहीं दूर दूर तक उनका सिलाई की कला प्रख्यात था। अनेक अनेक नगर से जो जो सब फेमस टेलर है वो लोग अपने को गौरव मन करते थे, ये बोल करके कि बोर्ड में लगा थे अपने लिख करके कि मैं मथुरा के गुणक उस टेलर से मैं टेलरिंग सीख करके आया, उनसे सर्टिफिकेट लिया। तो आपने आपको बड़े इससे सर्टिफिकेट मिला, मतलब बहुत हाई क्वालिफाइड मथुरा के टेलर से सीखा हूं। तो इतने सचमुच बड़े कला कौशल था, बड़े शांत स्वभाव के, कभी नीचे नहीं उतरता हो, हमेशा अपने काम के लिए अपने दुकान में बैठ करके बड़े तल्लीन होकर काम करता था, और जिस वस्त्र को वो सिलाया तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता। लेकिन जिसका पास कला होता है उसका पास कुछ खून भी होता है क्या, कोई बुलाने से किसी के घर में कभी नहीं जाएगा, महाराजा को भी आपने पोशाक सिलाने के लिए खुद आता था मना देने के लिए, हाँ वो नहीं जाएगा, और सेवक भेज करके वस्त्र ले जाना पड़ता था, किसी का पास नहीं जाएगा। लेकिन दूसरा और बात है, कोई बार्गेनिंग भाव मूल करेगा सुनेगा नहीं, जो मुंह से निकला सो भाव मूल नहीं सुनेगा, दूसरे का तो कपड़ा लेता ही नहीं था वो, बड़े मुश्किल से किसी का वस्त्र उन्होंने स्वीकार किया सिलाई करने के लिए, तो समझो ओहो भाग्य, नहीं तो लेता नहीं था, कभी उतरता नहीं था, कभी कभी विशेष उत्सव पर कभी जाकर के जमुना जी में स्नान करने के लिए जाता था, नहीं तो नहीं, अपने काम में चुपचाप रहता था, ज्यादा किससे बोलता नहीं था, अगर कुछ बोलता था जितने आवश्यक पड़ता था इतने ही बोलता था, और धीरे भी बोलता था, उसका बात सुनने के लिए बड़ा ध्यान लगाकर सुनना पड़ता था। तो आज मथुरा के नागरिक देख रहे हैं ये बूढ़ा दर्जी क्या हुआ है, तो आज तो कुछ नहीं, नीचे उतर रहा है अपनी दुकान से, एक हाथ में कैंची लिया है, दूसरे पॉकेट में धागा और सुई डाल रखा है, और कैंची लेकर नीचे उतर रहा है, सब आश्चर्य रही है। बड़े लंबा ऊंचा शरीर था उनका, लंबे लंबे हाथ थे, हाथ में लंबे लंबे अंगुलियां थी, और इसमें गोरे तक तक थे, सारे मस्तक के बाल सारे सफेद हो चुके थे, पूरे बाल सफेद थे, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन फिर भी आंख उनका सतेज थी, बड़ा देखती, चश्मा नहीं लगाता था। आप उतरा, सभी उनको सम्मान करते थे उनके कला के लिए। ओ आकर के वो तो क्या, क्योंकि एक सिलाई स्कूल खुल चुका था उन्होंने, बहुत लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। वो जब उतरा, ये क्यों उतरा, सब लोग देख रहे हैं, आपने हाथ से कैंची और धागा लेकर के धीरे से बड़े शांत मूर्ति से आया, आगे बढ़ते आकर के सीधा राम श्याम के सामने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर आप इजाजत दें, अनुमति दें, तो आपके जो कपड़ा बड़े उच्च कोटि के बहुमूल्य वस्त्र पहने, लेकिन आपको बेढंगा है, आप अगर आज्ञा दें तो मैंने उसको ठीक ठाक कर दूं, आपके अनुरूप सजा दूं। श्याम सुंदर बोले, हम तो वही ढूंढ रहे थे, और क्या करें, हम पहनना नहीं आता, आप कर दो तो, लेकिन जल्दी है, हमको घूमकर जाना है, वापस कर दें ना, बस आप आज्ञा दो, मैं शुरू कर दिया बस तुरंत। बोले, नहीं पहले भाई है ना, दाऊ जी है, पहले उनका करो, बाद में हमको। तो कृष्ण जी के आदेश से दाऊ की भैया के पास पहुंच गए टेलर मास्टर। अब जा करके सभी देख रहे हैं, सुने तो थे उनके बारे में काफी, लेकिन आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कभी ऐसा टेलर कभी आपने सुना ना देखा कि आपके कपड़ा सिला दे, ठीक कर दे, कोई शर्ट आप पहने हैं बड़ा छोटा हो गया है उसको रिपेयरिंग कर दे, आपसे आप पहने हुए शर्ट उसी कर दे ना, उतार के करेगा, किसी का देह से कपड़ा उतारा नहीं, सब शर्ट पहने हुए, पहने पहने उन्होंने, वो देख रहे हैं सारे लोग, चारों तरफ घूम गया, कहीं थोड़ा कपड़ा खींच दिया, थोड़ा मोड़ करके कहीं दो टांका लगा दिया, कहीं थोड़ा काट दिया, कहीं यहाँ क्या, बस फटाफट एक दो परिक्रमा कर लिया तो काट फुट कर खींच खांच कर बिल्कुल ऐसे बना दिया मानो कि बिल्कुल मेजरमेंट ले करके कई दिन से बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से कोई सीख कर रखा है, इतने भी फिटिंग बना दिया। आश्चर्य है, किसी को वस्त्र शरीर से उतारा भी नहीं, बोला हाथ उठा करो ऐसे भी नहीं, आपने हाथ से इधर उधर खींच टान करके थोड़ा काटा थोड़ा टांका लगाया, बस ऐसे। उनके कला को, उनके हाथ की फुर्ती को देख करके लोग सब धन्य धन्य हो रहे थे। देखते देखते कुछ ही समय में सारे बालकों को, कृष्ण के समेत सभी का वस्त्र ऐसे भी फिटिंग बनाकर उनको पहना दिया, जाकि कोई बिल्कुल कोई जैसे मेकअप करते ना ड्रामा आदि करने से पहले, हम तो खुद नहीं पहन सकते, कोई मेकअप म्यान होता है, मेकअप म्यान आपको दो चार आईना लगा करके बड़े कसरत लगा कर घंटों पसीना उतर के फिटिंग करके दिया है, ऐसे भी फिटिंग सजा दिया, बिल्कुल आपके अनुरूप हिसाब से ड्रेस को बना दिया। सब चकित थे देख करके, आप सबको ड्रेस बिल्कुल भी फिटिंग बना करके आ करके भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया, प्रभु अब आज्ञा दे। अब तो भगवान प्रसन्न हो चुके थे, तुरंत अपने दक्षिण कर कमल उठाए, उनके कंधे पर धरे, बोले मांगो क्या इच्छा तेरे, मांगो, मुझे क्या इच्छा है, आपके आज्ञा से आपके सेवा कर दिया, जन्म जन्म से आपके और आपके जनों की ऐसे सेवा करूं, यही मेरा इच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे मुझे क्या चाहिए। बोले वो तो होगा, अभी भी मेरा सेवा किया, अगले जन्म में पूरा हमेशा मेरा परिकर ही रहेगा, तूने मेरा पोशाक आप ही बनाएगा, इसका चिंता मेरे पोस्ट तुझे दे ही दिया, लेकिन अभी तो कुछ लो ना, बस क्या चाहिए, नहीं तू नहीं ले तो मेरे ओर से मैं दे रहा हूं, सभी के सामने। श्याम सुंदर ने उनके कंधे पर हाथ रख करके अपने आशीर्वाद वाणी बोले, बोले मेरे ओर से मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि आपके जो बूढ़ा शरीर तुरंत तरुण जैसा हो जाए, आपके सूर्य और जो बल बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, और ऐसे संपत्ति आपको प्राप्त हो जो पीढ़ी तक बढ़ते रहे, अक्षय संपत्ति प्राप्त हो जाए, और शरीर में तेज बल इंद्रिय शक्ति सब प्राप्त हो जाए, बड़े यशस्वी भव, ऐसे कह करके बस चले। और वो तो भगवान की करस्पर्श पा करके, उनके मुख से वाणी को सुन करके इतने मुग्ध हो चुका था, बस उनके आंख से लोतक धारा बह चला था, वो तो बस खड़ा रह गया था। ये बाकी सारे लोग चल पड़े, बाकी भी लोग चल पड़े, लेकिन वो बूढ़ा इधर खड़ा ही है, वो नहीं जा रहा है। और लोग देखे कि भगवान से हाथ उठाए तो बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, बाल भले काला नहीं हुआ लेकिन शरीर तो बिल्कुल 16 साल के जैसे हो गया, बिल्कुल 16 साल ऐसे चमक आ गया, बिल्कुल किशोर अवस्था। उनके बाजार वाले गांव वाले ने जा करके उनको भरे थे, वो इधर खड़ा है, वो तो गूंगा हो चुका था, उसको ले करके उठा करके उन्हें दुकान में बैठा दिए। दुकान में थोड़ी देर तक बैठा, थोड़ी वो देर में उनका बाह्य स्थिति आया। जब आया तब और आश्चर्य की बात है, क्या वो तो सुना था कि कई एक स्पर्शमणि हुआ करता है, क्या स्पर्शमणि हुआ करता है न, स्पर्शमणि को कई कोई लोहे की वस्तु को धातु को छू देने से वो सोना में पलट जाता है। लेकिन ये अद्भुत था उनके नील सुंदर नीलमणि, ये तो केवल हाथ छुया और ये पूरे इसी बूढ़ा के शरीर ही स्पर्शमणि हो गया। वो टेलर देख रहा है कि मेरे शरीर स्पर्शमणि हो गया कैसे, नब जिस वस्तु को छू रहा है, जिसको देख रहा है, वो तो सब शरण में होते जा रहा है। पूरे उनका घर, उनके दीवार मकान किवाड़ टेबल चेयर सब सोना बन गया, और शरीर तो इससे जवानी हो चुका था। इतने संपत्तिवान कर दिए, इतने दे दिए, ये था भगवान। सारे नगरवासी देख रहे हैं, अरे बातों बातों में इसे कर दिए, ये बूढ़ा था 80 साल के 16 साल के जवान बना दिए। वो दरिद्र था, अब देखो घर में तो संपत्ति की अक्षय संपत्ति हो गया। ऐसे उनको कृतार्थ करके आगे बढ़े भगवान ने, बालकों के साथ आगे बढ़े और दोनों ओर से भीड़ उनके ऊपर तलगा रहा है, पीछे पीछे उनके साथ चल रहे हैं। अब उन्हीं की चर्चा चल रहा है सबके बीच में। अब भगवान ने सोचे कि अभी अच्छा ड्रेस पहन लिए, लेकिन अभी फिटिंग भी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा पुष्प माला फाला भी तो पहनना चाहिए। तो मेन रोड पर जा रहे थे, हाईवे के ऊपर जाते जाते हठात एक गली से आया, गली के अंदर घुस गए। उन्होंने सारे ग्वाल बाल ने देखे, अरे कन्हे कहाँ जा रहे हैं इधर गली में, दाऊ भी देखे। उनने बलराम की ओर मुख किए, बलराम जी हंस दिए, उनको समझ में आ गया कहीं जा रहा है। जब नगर को दर्शन करने आए हैं केवल मेन रोड में जाएंगे, गली भी तो देखेंगे, यहां भी कुछ देखने लायक हो तो वहां चल पड़े। अब जब वो दाऊ दादा जा रहे हैं और कन्हैया जा रहा है तो बाकी ग्वाल वाल भी उनके पीछे पकड़ लिए, बोले चलो चलो हम भी चलते हैं, सब चल पड़े उनके साथ में। पूरे नगर में भीड़ था मेन रोड में, आगे भी लोग खड़े थे कि इस रास्ता पर तभी आएंगे, इस तरफ आएंगे। अरे आएंगे क्या, बोले तो वही मुड़ गए, यहां नहीं आएंगे। अरे ये क्या हो गया, रोड तो इधर था, इधर कैसे मुड़ गए। अब इधर से दोनों तरफ से साधारण साधारण आके उनके पीछे पड़े, जहां हो गए उनको तो देखेंगे, उनके पीछे गली में से हो गए। अब चलते गए चलते गए, कहाँ जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी को पता नहीं किसी गली में जा रहे हैं। जा करके जहां गली के अंत हुआ वहां पे देखे एक पुष्प उद्यान था। पुष्प उद्यान के सट करके एक साधारण सा मकान था और सीधा जा करके उस मकान में श्याम सुंदर ने घुस के प्रवेश किया, तो उनके पीछे दाऊ जी भी चले गए। तो वो दोनों चले गए तो बाकी सखा कैसे, उनका तो वो भी चल पड़े, वो सीना चल बैठे। लेकिन ये नगरवासी वो तो जानेंगे, वो तो यहां तक गए बस यहीं खड़े रहे, पता नहीं किसका घर का, लेकिन गांव वाले को तो पता है किसका घर है। वो सब बाहर खड़े रहे, बाहर खड़े रह करके उनका बीच में चर्चा चल पड़ा कि पता है उस दिन काल जब आए सारे बच्चे बता रहे थे अक्रूर ने उनके वसुदेव जी के सगे भाई लगेंगे और उनके चचे लगेंगे, उनको स्वयं अपने रथ से बैठा करके लाए ब्रज से, रो रो करके उनके पैर पकड़ करके बोल रहे थे चलो मेरा घर में थोड़ा थोड़ी समय के लिए घर को पवित्र कर दो, चरण धरो मेरे घर में चलो, इतने अनुरोध कर रहे थे रो रो करके, उनको अनसुनी कर दी, बोले नहीं बाद में देखेंगे, गए नहीं उनके घर में। अब देखो ये तो बुलाने भी नहीं गए रास्ता पर, रोड तक भी नहीं गया, अभी देखे नहीं, घर से निकला भी नहीं, पता नहीं क्या कर रहा कहां है कि नहीं। अरे वो घूम फिर करके उनके घर में आकर घुस रहे, कौन है अरे पता नहीं, ये तो सुदामा का घर है, सुदामा। अच्छा हो, अरे पता नहीं तुझे, आप तुझे सब यंग हो तो बूढ़े बूढ़े नागरिक बोलने लगे, वो दिन हम तो देखे थे मथुरा में, वो दिन था जब मथुरा में जितने श्री मंदिर देव विग्रह हुआ करता था सभी के पक्ष में सुदामा के हाथ की ही बना हुई माला भूषित करता था, उन्हीं के माला सब पहनते थे जितने देव विग्रह हुआ करते थे, माला के जो कला कुशलता उन्हीं के पास है, वो जब फूल को हाथ में लेता है मानो फूल उनसे बात करते हैं। कौन से सीजन में सुबह या दोपहर या शाम किसी समय में किस रंग का किस सुगंध का किस आकार का फूल के स्तबक बनना चाहिए माला बनाना चाहिए इसके बारे में विशेषज्ञ था, भली प्रकार ज्ञान था उसको, और स्वयं का पुष्प बगीचा था, पुष्प बगीचा को इसे उन्होंने बढ़ा कुढ़ा कर इसे करके रखा था मानो पेड़ तो उनके बच्चे हैं, इसे पालन करके रखा था, और कोई भी जाए उनके माला लाने के लिए मूल्य नहीं पूछेगा, पूछेगा क्यों लेकर जाएंगे माला किसके लिए, अगर कोई बोलेगा कोई नेता के लिए इसके लिए उसके लिए, बोला नहीं नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, भले कितने दाम दे दो नहीं देगा, बोलेगा कि नहीं अभिषेक हो रहा है ठाकुर जी का, हाँ लेकर जाओ, मूल्य दो या ना दो लेकर जाओ। केवल देव विग्रह के लिए ही उन्होंने मथुरा में जहां जहां भगवान नारायण की शिव विग्रह हुआ करता था सभी तो केवल उन्हीं के माला पहनते थे। उनके माला का एक खासियत था, बड़ी सुंदर सचकर के माला तो बनाता था, लेकिन ये खासियत था कोई भी मथुरावासी अभी माला नहीं देखे हैं लेकिन उसके सुगंध को प्राप्त करके बोल देंगे ये तो सुदामा के वहां आया होगा, क्योंकि उनके माला में एक अद्भुत सुरभि निकल रहा था, केवल गंध मात्र से लोग बता देंगे कि ये तो उनकी बनाई हुई माला होगा, इतने खासियत था उनके पास। उनका जीवन की साधना ही रहा केवल भगवान के लिए माला बनाना स्तबक बनाना, इसी के लिए बगीचा में उन्होंने सिंचाई सवारा कर रहा था, और यही उनका जीवन यही उनका साधन था हमेशा ही, किया और किसी के लिए नहीं केवल देव विग्रह के लिए उन्होंने अपने जीवन सारा वही साधना करके आया, फूल उगाना और फूल माला बना करके देना। लेकिन क्या कहें आप लोग तो पता नहीं, जब से ये दुष्ट राजा कंस बना, कंस जब जबरदस्ती राजा बन गया जब से, तब से वो फिर आपने माला काम से सन्यासी ले लिया। लोग पूछे सुदामा जी क्यों नहीं, और बूढ़ा हो गया और हाथ नहीं चलता, हाथ में कंपन हुआ और नहीं कर सकता, छोड़ दिया माला काम नहीं करता है, फिर करता क्या है, करता क्या है, बस जब देखो तब उद्यान में बैठा रहता है, कभी सिंचाई करता है, कभी पेड़ के पास बैठ के रोता है, कभी इसको पानी देता है, संवारता है, वही कुछ करता है, फूल उगाता है, बस वही भजन साधन करता है, कि बाहर जाता नहीं, जो कुछ फल फूल लाकर थोड़ा खाता बस यहीं रहता है, कभी कभी उत्सव के दिन जमुना जी जाता है, नहीं तो बस चुपचाप किसी से बातचीत नहीं करता बैठा रहता। अरे वो तो बात अलग है, एक बार महाराज उग्रसेन ने माला मगाए रानी की श्रृंगार करने के लिए, महारानी की देन नहीं दिया माला, नहीं दिया, मना कर दिया, बोला ना हम किसी के श्रृंगार के लिए नहीं देंगे, महाराज भी उनको सम्मान करते थे, बड़े निष्ठा पर है। तब श्लोक ने बोले अच्छा ये बात है, इसी साधना के बल से आज ठाकुर जी खींचे हुए उनके घर में आ रहे हैं, जो सारा जीवन उनके लिए किया है तो फिर उनके पास कैसे नहीं आएंगे। अच्छा अब ये तो बाहर की चर्चा, अभी अंदर की सीन देखते हैं क्या चल रहा है घर के अंदर। घर के अंदर क्या चल रहा था, सुदामा जी द्वादशी था तो त्रयोदशी के दिन ही चल रहा है, द्वादशी के दिन सुबह सुबह गए थे पारायण करने से पहले जमुना जी स्नान करके पारायण करेंगे। जब स्नान करके आ रहे थे सुबह सुबह देखे कि अक्रूर जी रथ लेकर जा रहे हैं। पता लगाए कहाँ जा रहे हैं, न वसुदेव के दोनों कुमार को व्रत से लाने के लिए जा रहा हूँ। जब उनके पता चल गया वसुदेव जा रहे हैं, अभी वसुदेव के दोनों कुमार को लेकर आएंगे, उनका तो सदा के लिए ही वसुदेव कुमारी भगवान वासुदेव ही उनके आराध्य देव थे, उन्हीं को उन्होंने मन में अपने आराध्य देव मानकर रखा था। जब उन्हें सुना कि वो कुमार द्वया उनके इष्टदेव को अक्रूजी काल लाने वाले हैं, तब वहीं से ही रास्ता से ही उनके हृदय मन नाचने लगा, इतने खुश हो गया। तो आकर बोला, वो जब आवेंगे मथुरा भाई तो मेरे पास नहीं आवेंगे, अवश्य आएंगे, मेरे घर में कैसे नहीं आएंगे, मैं अगर उनका हूँ तो मेरे पास अवश्य आएंगे। तो आएंगे तो उनके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। आवरे काल आएंगे, वो टाइम कहाँ है। झट से आया, आ करके सारे घर को, कई दिन से सफाई झाड़ू नहीं लगाया था, अकेली थी, तो सारे घर को सफाई वफाई किया, पूरे झाड़ू दिया, सजाया, धोया पोछा सब कुआ, पूरा दिन लग गया उसमें, पूरा दिन लग गया। और शाम के समय में सारे बगीचा में जा करके फूलों में सिंचाई किया, जो लता विरुद्ध सब थे उसमें, और क्या क्या पता नहीं मसला बनाया था उनने, मसला दिया सो पेड़ में, उनको बताया, उनको पता है सारे प्रयोग कि बहुत जल्दी बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फूल कैसे बनाया जाए पेड़ से, ये उनको कायदा पता था। तो सब इस प्रकार किया और बगीचा रे फूलों को वीरेंद्र को पेड़ को बोल रहा था कि रे मेरे बच्चों, काल आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप पुष्प और वीरेंद्रों का जब जन्म मिला ना, काल ही कृतार्थ हो जाएंगे, पूरा जी भर के काल सब खिल लेना जो है आपके पास। काल श्याम सुंदर आ रहे हैं और आपके पास आवेंगे और आपको स्वीकार करेंगे, काल के दिन ही तो, काल के दिन के लिए ही आप लोग को मैं पाल कर रखा था। ऐसे बोल बोल करके सब सिंचाई सवार कर रहा था, देखा कि शाम हो गया, मार्केट बंद हो जाएगा, क्योंकि सालों हो गया है, वो जो सुई है तो बिल्कुल जंक लग गया है, वो तो माला बनेगा नहीं, धागा भी पुराना हो चुका है जो कर रहा था। तो बोला बाजार से लाना ही है, तो फटाफट कुछ लेकर के बाजार निकला, जा करके मेन मार्केट से लोग देखे कि शाम के मेन मार्केट में घूम रहा था वो, तो हाँ किस लिए गया था, नो धागा खरीदा, रंग बिरंगी कुछ धागा और कुछ सुई खरीद के लाया, और कुछ फल के टोकरी जो भी था उनके पास बेचारा, जो थोड़े बहुत फल कंदमूल लेकर आया, ला के घर में रखा, और सारे रात भी घर को सजाने संवारने इसमें लगा, मन में पूरा चिंता कि काल आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये बनाऊंगा, इसे बोलूंगा, इस प्रकार बात करूंगा, इसी सपना में सारा रात बीत गया। रात बीतने से पहले से ही उठ पड़ा है, वो आएंगे तो उनके लिए तो माला बनाना ही पड़ेगा, उनके विग्रह के लिए माला बनाए बनाए जिंदगी गया मेरा, जब साक्षात तो परमेश्वर आएंगे तो उनको माला नहीं पहनाऊंगा, मेरे जीवन तो उनके लिए है माला बनाना। तो रात बीतने से पहले ही उठ करके बगीचा में चला गया। अरे अद्भुत बात है, बगीचा में जाकर देख रहा है, वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि जो पेड़ लता पता विरुद्ध सब थे वो तो दिखाई नहीं पड़ते, केवल फूल ही फूल, उनके शाखा प्रशाखा मूल से ऊपर तक केवल फूल ही जैसे बना था, इतने फूल, इतने सुगंधी और इतने प्रकार के फूल खिल गए थे कि उसमें कोई पेड़ लता पता पता कुछ है कुछ ही नहीं पता चलता था, पूरे सजे मजे भरे हुए थे। बहुत आनंदित हुआ, बहुत उनको प्रसन्नचित होकर के, और टोकरी टोकरी भर के फूल निकालने लगा, नए नए किसल, नए नए पत्ता, तुलसी की मंजरी और बहुत सारे ढेर ढेर टोकरी भर के फूल। अब 7-8 बजे तक तो फूल तोड़ने लगा उन्होंने, बहुत सारे फूल तोड़ करके पूरा भर दिया, अब बैठ गया, बैठ गया, अभी मेरे प्रभु आएंगे, अब तो इतने बड़े होंगे, ऐसा उनका केस हुआ होगा, ऐसे गले हो गए होंगे, ऐसे अनुमान करते करते बड़े ध्यान से तन्मय से माला बनाने लगे, नए सुई नए धागा लाए थे, माला बनाने लगे, माला बना बना करके, और इतने तन्मय होकर माला बनाता था, सुंदर सुंदर सजावट अपने ढांचा से रूप से, कि कोई अगर साधारण कलाकार कोई कभी भी अपने कला में अपने सृजन में अगर तन्मय होकर लग जाते हैं, अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं, हम देखते हैं कभी कभी। लेकिन सुदामा, आज तो वो अपने जीवन के चरम परम समाधि के लिए, परम सौभाग्य की सृजन में लगा पड़ा था उन्होंने, तो उनको कैसे उनका शरीर के शुद्ध रहेगा। बिल्कुल तल्लीन होकर के बना रहा था, पता नहीं समय कैसे बीत रहा है, क्या हो रहा है। अब कृष्ण बलराम पधार चुके उनके घर में, आकर के उनको कोई ध्यान ही नहीं, हो तो बना करके माला सरे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिजाइन के, कई मोटे तगड़े छोटे सब बनाकर रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, पता नहीं। वो आकर खड़े हैं, भगवान को बुलाना पड़ा, उनको ध्यान भंग करना पड़ा। माली, ओ माली, इसे शब्द उठी कर दृष्टि ऊपर करके देखा, अरे चौंका, अरे मेरे स्वामी, मेरे प्रभु आ चुके हैं। धड़बड़ होकर उठा, दंडवत प्रणाम किया। अब क्या करे, बड़े जल्दी से, पता ही नहीं था ओ कि पुराना फटा चटाई पड़ा था घर में, उसको बिछा दिया। इसमें कैसे बैठेंगे, जो नए नए पत्तल से पड़ा था, सर पत्तल ला के उसको भी डाल दिया। बोले इस पत्तल में बैठ जाइए। था नहीं बेचारा, क्या करेगा, माले मालाकार है। पत्तल डालकर पत्र सज्जिया में उनको बैठाया, दोनों प्रभु को और उनके साथियों को सबको बैठाया। बैठा करके बोला, अब जो मेरे घर में आए, थोड़ा आपकी सेवा करना, क्या करना चाहिए। तो पानी ला करके सब चरण धोया। चरण धोने के बाद भूल गया क्या करने के, धूप अगरबत्ती जो उल्टा पुल्टा करके थोड़ा बहुत उनको पूजा पूजी किया। और फल लेकर आया था कल रात को, थोड़े बहुत फल कंदमूल लगाया। बोला देखो, जो मेरे गरीब के घर में सामर्थ्य है उसको आप ग्रहण करो। भगवान को और जो कृपालु हैं, जो अपने जन्म हैं, उनको मंत्र जंत्र पढ़ने के लिए वेट नहीं करना, तो पहले से शुरू कर दिए थे। बालक बोले थे तीसरा पर हो लेगा, अब फलाहार करना चाहिए, फलाहार शुरू कर दिए थे। अब वो भोजन करके तृप्त हो गए, तब उठ करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब क्या करूं। अब उनको याद दिलाना पड़ा कृष्ण को। बोले कृष्ण, सुदामा, हम तो आपके घर में आए कि माला पहने, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो उसी के लिए बना के रखा था, मैं तो आपको देखकर भूल गया कि इतने माला बना। अब लगा सजाने, एक से एक मोटी मोटी, पूरे घुटने से नीचे तक कई प्रकार के सुगंधी, कई प्रकार के रंग बिरंगी वैजयंती माला, केस में माला, हाथ में माला, बले में। अब चारों तरफ से पूरे कृष्ण को, बलराम को, सारे ग्वाल वाल को ऐसा फूल में पुष्पमाला में सजा किया। हरी बोल,
किस अदा पे तेरा, रखा है किस करुणा बरस रही है करुणा बरी निगाह से करुणा बिन मोल बिक गई है बिन मोल बिक गई है छब से छबि निहारी बिन मोल बिक गई है जब से छबि निहारी फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों श्री वृंदावन बैया गले लगाकर जब दोनों मुस्कुराते
नीलम
प्रकार दोनों प्रभु पुष्प आभरण धारण करके पूरे आपद मस्तक पुष्प सज्जा हो चुका है। सुदामा माली तो अभिज्ञ था इस कला में, स्वयं अपने हाथ से सजाया, बहुत सुंदर रत्न खचित राज पोशाक तो पहने थे विफिटिंग, सारे साथियों के साथ उनको पुष्प से सुंदर सुंदर सुगंधित चुने हुए पुष्प के माला से श्रृंगार किया। पुष्प श्रृंगार करने के बाद में फिर आकर के सुदामा ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब भगवान को कोई फूल भी दे दे, भगवान इतने कृतज्ञ नहीं है, वो तो देंगे अपने स्वभाव से। दोनों हाथ रख दिए सुदामा के सर के ऊपर, बोलो सुदामा क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, जो इच्छा सो मांगो। सारे बालक सुनकर के बोले ये हुआ ना काम, ये जो हमारे राजा के लड़का का यही होता है, दे दो मन मर्जी। इतने बढ़िया फल भी खिलाया, इतने सुंदर सुंदर फूल सजाया, देना चाहिए बेचारा गरीब को। आपको क्या है, आपको तो केवल बोलकर जाना चाहिए, कल बाबा को जाकर बोल देंगे, बाबा तो दे देगा, कल घर भर देगा उनका, और उसे क्या है, आपको कोई हाथ से थोड़ी देना होता है। तो सभी ने ये सोच रहे हैं, सुदामा तो अपने नम्र स्वर से बोलने लगा है, प्रभु अगर आप मुझे कृपा कर कुछ देना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि जन्म जन्म तक आपके इस प्रकार सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, उसके साथ आपके निज जनों का सौहार्द्य मुझे प्राप्त हो, और सारे प्राणियों के ऊपर मेरे हृदय में दया भाव रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सारे ग्वाल बाल सुने बोले क्या बोलना, ये कोई मांगना होता है, ये बहुत सादा भली आदमी है, कुछ मांगना ही नहीं आता है उसको। अरे जिसका कर कमल सर में रख दिए, ऐसे विश्वेश्वर के कर कमल जिसका सर पे रह गया तो उसको ये सब की कमी होता है कि, तो अपने आप हो ही गया, फिर मांगता क्या ये सब चीज। लेकिन भगवान ने हंस के बोले ठीक है, जो आप बोला सो तो होगा ही। तो बोला कि मैं तो कृतार्थ हो गया, लेकिन मेरे ओर से तो कुछ लेना पड़ेगा, जो आपकी इच्छा, मेरे ओर से तुझे पूरे वंश परंपरा में बढ़ते हुए संपत्ति बल आयु स्त्री ऐसे सब प्राप्त हो उनको, ऐसे वरदान दे करके वहां से निकले, उनके घर भी सुवर्णमय कर दिए, और इस प्रकार कृपा आशीर्वाद दे करके उनको धन्य करके जब निकले, सुदामा बस वही खड़ा है, आंख से आंसू बह रहा है, वो भी नहीं जा रहा है, उनका तो प्रेम समाधि का स्थिति आ गई। क्यों, क्योंकि साक्षात परम पुरुष द्वय सामने खड़े हो, उनको आपने हाथ से माला पहनाए श्रृंगार करे, और वो कृपा कर कमल अपने सर पर धर दे, और अपने मुख से जांच करके उनको आश्वासना आशीर्वचन दे, वो जो छवि क्यों हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रभु जी ने बरद हस्त सर पे रखे हैं, इस छवि उनका हृदय में बस गई, उसी को चिंतन ध्यान कर रहा है। भगवान ने कब अपने हाथ उठाए, अपने साथियों के साथ घर से निकले, चल पड़े, वो तो बस वहीं इस स्थिति में खड़ा है, उसी को ध्यान कर रहा है, उसी को ध्यान कर रहा है, कैसे नहीं करेगा, ऐसे छवि किसके हृदय में आ गया, ये कभी निकल सकता क्या, आता ही नहीं, एक बार आए तो सही, लेकिन सुदामा का तो नित्य प्रति सत्व ही हो गया उनका, हमेशा उनके हृदय में यही छवि बस गया। तो इसलिए इस स्थिति पर सुदामा जी थे तो वहां से निकले, अपने साथियों के साथ राम और श्याम आगे बढ़े, गलिये से बाहर निकल करके फिर राज रास्ता पर आ गए, फिर भीड़ देखने लगे, अभी तो बिल्कुल राजवेश था, राज के पोशाक, उसके ऊपर में इतने सुंदर पुष्प की श्रृंगार, पूरे शरीर पुष्प सज्जा से भरा है, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि देखने बने। तो सारे दोनों तरफ से लोग खचाखच भीड़ से उनको देख रहे थे, अब तो उनको लग रहा था कि अरे ये तो इतने कृपालु है, ये सुदामा माली के घर में चले गए, ये दर्जी की भी पकड़ लिए, उनको भी कृतार्थ किए, तो उनके पास तो कोई भी जा सकता है। तो अभी तो लोग उनके नजदीक आने लगे, भेंट लेकर के, कोई तिलक करे, कोई आरती करे, उनके पास पास भी आने लगे थे, दूर दूर में खड़े होते थे, अभी तो पास पास आने लगे, बोले बड़े कृपालु है। तो ऐसे भीड़ के बीच में अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, हठात एक दूसरे गलियों से एक स्त्री आ रही थी, बाकी किसी का नजर तो जाती नहीं, बाजार से, बाजार के बीच से गली से आ रहा था, वहां से एक स्त्री आ रही थी, बड़े जल्दी से नीचे मुंह करके चल रही थी, सारे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन हठात सारे बालक देख रहे हैं कि कृष्ण उनकी ओर बढ़ गए, सब बालक सोच रहे पता नहीं ये हमारा कान्हू बहुत चंचल है, जब नहीं जैसे जिसको भी जाकर छेड़ देता है। अरे तुम्हारा क्या करे, वो एक स्त्री है, वो जा रहा है, तुम्हारा क्या पड़ी है उसमें। वो बेचारे स्त्री कुबड़ी थी, बाकी सब अच्छी थी उनकी, और बड़ी बेग से अपनी ढंग से चलकर चली जा रही थी, मुंह नीचे करके किसी के वचन पर ध्यान नहीं देना, किसी के कुछ ना देखना ना सुनना, इसी प्रकार हिसाब से चले जाते, क्योंकि कई तरुण चपल लोग उनको व्यंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, उनको नकल करते हैं चली के चाली के। तो इसलिए आओ राज सेविका है वो कुबड़ी स्त्री ने, भगवान ने उनको बहुत सुंदर रूप तो दिए हैं, बड़े सुंदर मुख उनके गौर वर्ण, सुंदर सुंदर आंखें, बहुत सुंदर अलके, सब सुंदरता है, लेकिन विधाता ने सारे सुंदरता को खो लिए एक पीठ में एक कुबड़ दे करके। अब इस कारण से सभी के नजर में वो तो व्यंग्य के पात्र है, लेकिन विधाता ने उनको एक कला के धनी किए थे, अंगराग बनाने का बड़ा कला उनको पता था, निपुण था, इस कला के कारण राज सेविका बन गई। मथुरा में उनका अपना खुद का फ्लैट था और बड़ा सुंदर भवन था, धन भी था, लेकिन क्या करे, भगवान ने केवल उनको भवन दिए, धन दिए, लेकिन किसी का नहीं बन पाया, उन्होंने किसी का बनने का जो अधिकार एक कुबड़ ने छीन लिया उनसे। तो भगवान श्याम सुंदर ने बढ़ करके उनके पास में जा करके बोलते हैं, हे सुंदरी आप किसकी हो, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, ये अंगरा किस लिए ले रहे हो, इतने सारे प्रश्न पूछ दिए। कई बार इसी रास्ता से वो जाती थी अपने मकान से निकल करके राज आवास में, तो हमेशा कई लोग उनको चिढ़ाते तंग करते, तो इसलिए वो तो हद हो चुका है, किसी की ओर देखती नहीं, किसी को सुनती नहीं, अपने अपने मुंह नीचे करके चल जाती थी। आज भी जा रही थी मुंह नीचे करके, और अपने हाथ में एक सोने की डालिया ले रखी थी, उस स्वर्ण डालिया में कई सारे स्वर्ण कटोरियां भरे थे, और हर कटोरी में अलग अलग प्रकार के रंग के, अलग अलग प्रकार सुगंध के अंगराग भरे हुए थे। जिस रास्ता पर वो चली जाए उस रास्ता पर महक कंपमान हो जाए, पूरा विधि ही जल सुगंधित हो जाए, इतने सुगंधित अंगराग लेकर जा रही। और भगवान ने जाकर पूछे, उन्होंने खड़ी हो गई, उनको लगा ऐसे शब्द सुना उन्होंने, ये शब्द तो कोई मन चले तरुण का शब्द नहीं है, कोई मुझे कमेंट तो नहीं कर रहा है, ये शब्द कोई शब्द है क्या, ये शब्द तो मेरा श्रवण रंध्र से प्रवेश करके मेरा अंतर तक जैसे अमृत के प्रवाह चल पड़ा। तो इतने आनंदित हो गई, रोमांचित हो गई शब्द को सुन करके, दृष्टि उठाकर देखी कौन बोल रहा है ऐसा बात, मुझे सुंदरी कौन बता रहा है। जब मुख उठा करके दृष्टि उठा करके देखी तो बस देखते ही रह गई, बस अपलक नेत्र से एक टक देखती गई, सामने नवघन सुंदर खड़े थे, नील सुंदर सामने ही खड़े थे, साक्षात कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभंग, आपने सर्व सौंदर्य पुरुषार्थ के साथ राजकीय वेश पोशाक पूरे माले से पुष्प सज्जित होकर के सामने हो तो उनको देखते ही रह गई। उनका मन में उद्दीपना सा चली, वो पुरुष मुझे पूछ रहे हैं, ये तो ऐसे कोई चंचल लड़का नहीं है जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, वो मुझे पूछ रहे हैं, इतने सारे बात पूछे मैं क्या बोलूं, हे सुंदरी आप किसके हो? मैं तो किसकी नहीं हूं, मैं क्या बताऊं, अभी तक तो मैं किसकी हो ही नहीं पाई, ये कुबड़ ने किसके होने का सौभाग्य ही निकाल लिया मेरे से, अब क्या बोलूं, अब कहां जा रहे हो? तब उन्हें द्वितीय उत्तर देने लगा, कौन हो? तो बोला कि हे कुमार मेरे नाम त्रिवक्रा है, मैं हमारे मथुरा नरेश महाराज कंस के राजसेविका हूं, मेरे हाथ की बनाई हुई और लगाई हुई अंगराग के अलावा और किसी के हाथ की नहीं सूझता, मेरे हाथ की सेवा ग्रहण करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए मेरा संपन्नता है, धन की कमी नहीं है, और बाकी इस नगर में रहती हूं और प्रतिदिन ये अंगराग अति सुंदर उच्च कोटि के अंगराग बना करके राज आवास में जाता हूं, महाराज के अंग में अंगराग सेवा करने का सेवा मेरा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन हे परम पुरुष, आप दो पुरुष जो इतने सुंदर है, इसी उन्नत उच्च उत्तम कोटि के अंगराग का तो वास्तविक योग्य आप है, ये कंस क्या है, वो तो मुझे नौकरी कर रहा हूं करके जा रहा हूं, लेकिन आप ही उसके योग्य पात्र है, मैं इतने कायदे से बनाऊं आप, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हे सुंदरी अगर इस अंगराग हमको लगा दें तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तो बोलते हैं तो आपके लिए ही है, हमारा कल्याण हो ना हो मैं तो लगाऊंगी, तैयार हो गई, सीधा आ गई सामने, श्याम सुंदर के सामने, अब निकालने लगे कटोरी, श्याम सुंदर बोली बड़े भाई खड़े हैं वहां जाओ पहले, यहाँ का पहले क्यों आया, तो इशारा किए तो पहले दाऊजी के पास गए और अंगराग लेपन करने में बड़ा निपुण थी, भगवान के नीलांबर में और गौरव वर्ण में बिल्कुल कुमकुम कस्तूरी युक्त चंदन की पत्रावली, क्योंकि सारे शरीर तो पोशाक भरा हुआ था, उसके ऊपर में आपाद मस्तक पूरा माला में सजे हुए तो भरे थे, शरीर में बाकी है क्या जागा, कहाँ अंगराग लगाएगा, अंग में कोई जागा खाली नहीं था, केवल मुंह और कपोल इतना ही तो खाली था, बाकी सब ढंके हुए थे, बोले इतना ही काम करना था उसको, इसने सजाना था, तो पूरे कपोल में सुंदर सुंदर पत्रावली बनाई और पूरे गंडस्थल में अलग अलग प्रकार चंदन चर्चित बिंदु बिंदु देख करके कई प्रकार के चित्रकारी की, इतनी सुंदर सजाई, अलग अलग पर भिन्न भिन्न कलर के भिन्न भिन्न सुगंध के, तो देखते देखते बलराम जी के किए, फिर आकर के श्याम सुंदर को किए, उनके पीले कस्तूरी डाल करके उनको कुमकुम के साथ और बाकी जितने साथी थे सबको उनके अनुरूप रंग बिरंगे से सुगंधित से पूरे मुख चंद्र को ऐसे सजा दी, ऐसे चंदन बिंदु से चर्चित कर दी कि कोई देखने बने। और जल्दी से जल्दी केवल सबके मुंह में चंदन लगाना था, लगा करके आ करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब क्या खड़ी हुई, अब तो उनको शर्म जा चुकी थी, पूरे भरी मार्केट बीच बाजार में इतने सारे बालक साथ में हैं, बड़े भाई भी साथ में खड़े हैं, दोनों तरफ से लाखों मथुरावासी भरपूर हैं, पूरे खुले मार्केट, लेकिन आज वो तो किसी को देखती नहीं, कोई सुधबुद नहीं, आज तो वो रसमय हो उठी, ये परम पुरुष इतने नजदीक आए, मुझे बात किए, फिर दूर किसे हो जाते हैं। तो सभी नगरवासी बोल रहे थे कि भगवान ने जब उनको बोली थी तो बोले थे उनका कल्याण करेंगे, क्या कल्याण करेंगे। देखते देखते वो जब चंचन होकर के भगवान को आने लगी, भगवान श्याम सुंदर थोड़ा आगे बढ़े, बोले ज्यादा चंचल मत हो ना, चुपचाप खड़ी रहो। तो सबको देखते देखते भगवान ने अपने वाम कर पद पल्लव लेकर के उनके दक्षिण कर के ऊपर दबा के रखे, उनके चरण कमल को उनके पैर के ऊपर दबा दिए, सब देख रहे हैं। और आपने दाहिने हाथ में मध्यमा और अनामिका, वो दो अंगूठी ऐसे अंगूठा के साथ उनकी ठोड़ी पर हाथ रखे, सब देख रहे हैं। ठोड़ी के स्पर्श किए, इस चरण में उनके पैर को दबाए और इस अंगुली में उनके ठोड़ी को स्पर्श किए, सब देख रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, सबके सामने किए और एक झटका सा लगाए, कड़क करके एक आवाज हुआ, बस हुआ तो बिल्कुल सीधी हो गई। ऐसी सीधी हो गई कि सारे लोग देख रहे हैं कि उनका कोई कुबड़ थी ही नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि वो टेढ़ी थी। ऐसे सीधी हो गई कि सदा के लिए वो सीधी थी। सारे भरपूर लोग देख रहे हैं, सबका मन में ही प्रश्न आया कि इस नवघन सुंदर ने उनको बोले थे अगर आप काम चंदन बेस करा दोगे, अंगराग लगाओगी, तो अविलंब आपका कल्याण कर देंगे। क्या कल्याण कर देंगे, तो देख ही रहे सामने। जो सारे नगर में कुरूप करके सबके मजाक के, सबके व्यंग के पात्र बन रही थी, आज पूरे भरी सर्वसाधारण लोग देख रहे हैं कि इस त्रिवक्रा, उस कुबड़ी, आज कुबड़ी नहीं ऐसे सुंदरी बन गई। सुंदरी क्या, भगवान के स्पर्श पाकर जिस स्वर्ग के देवी मथुरा के राज रास्ते में उतर आई, पूरे सौंदर्य की घाटा बरस पड़ी उनके ऊपर। देख करके सब चकित होकर देख रहे हैं, ये तो कोई स्वर्गीय देवी उतर आए, इतने सुंदरी, इतने सुंदरी। आपने आपको देख करके, सारे जा चुकी थी, कुबड़ हट चुकी थी, सारे सुंदरता आ चुकी थी, अब उनका स्पर्श भी मिला, उसको कैसे वो सहन कर सकती है। अब तो वो पगली हो गई, बिल्कुल पगली होकर के आगे बढ़ी, सबके सामने बेशर्म होकर भगवान के उत्तरी पकड़ ली जाकर के, उनके चदर पकड़ लिया जाकर के, खींचे चलो यहां क्यों खड़े, फिर चलो हमारे साथ, हम घर में चले, घर चलिए, इधर क्यों खड़े। अरे देख रहे, सब देख रहे हैं, हंस रहे, लेकिन वो तो किसको नहीं देख रही है, इतने नजदीक आए, स्पर्श किए, मुझे ये सुंदरता दिए, तो फिर किसे चले जाएंगे, इतने पास आकर छोड़ दूंगा। और तो खींचने लगी, तो सारे ग्वाल बाल बलराम जी हंस पड़े, ताली बजा दिए। तो लेकिन उनको कोई शर्म नहीं लग रहा था, आज तो उन्मादिनी है, बिल्कुल रसमयी हो चुके। तो भगवान ने उनके हाथ छुड़ाकर बोले, त्रिवक्रा आप बहुत उदार है, हम जैसे अपरिचित रास्ता में चलने वाले पथिकों को भी अपने घर बुलाती है, आपके अंदर अतिथि परायणता बहुत है। चलो अब हमारा कुछ काम है, बाद में आएंगे, अवश्य आऊंगा, चिंता मत करो। अब इस बात को उन्होंने सुना दो बार कि अवश्य आएंगे, वचन दिए, उसी को लेकर के पीछे हटी, क्योंकि आज तो उनके चरण की दासी बन चुकी है। दासी का कर्तव्य है स्वामी का आदेश पालन करना, अगर वो ज्यादा हट करेगी शायद रूठ ना जाए, हैं? अभी होने से पहले झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए तो मान लेना चाहिए बात, ठीक है बोले आएंगे करके तो अपेक्षा करती हूँ। तो चुपचाप अपने भवन की ओर निकली, वो तो कुबड़ी ने परम सुंदरी होकर निकली, सभी नगरवासी ने उसको देख रहे थे, लेकिन इस जनसाधारण के बीच में घर के पर्दे के अंदर, छत के ऊपर, खिड़की के पीछे जितने कुल ललनाएं, जितने पूर्व नारियां थे, वो सब देख रहे थे, सब देख रही थी कि ये कुबड़ी दासी, क्या सौभाग्य उनका त्रिलोक भुवन नाथ के इतने सामीप्य मिला, उनको स्पर्श मिला, उनको इतने सुंदरी बन गई, हम लोग किस काम के हैं, इस कुल में हुए कि बाहर रास्ते में तो आ भी नहीं सकते, यहीं बैठे बैठे रह गए, ना उनके पास सामीप्य मिला, न स्पर्श मिला। हाय हाय हाय, आपने दुर्भाग्य को कोष करके, कोई नारी ऐसा नहीं रहे पूरे मथुरा में, सबको कितने दबाने पर भी आपने रोना रोक नहीं पाए, फुट फुट कर रोने लगी, क्या भाग्य, हम कितने दुर्भागा है, क्यों इस कुल में जन्म है, ऐसे होते इन परम पुरुष के सानिध्य मिलता हमको, वो तो धन्य होकर चली गई। अब इस प्रकार त्रिवक्रा को और शैलेंद्री सुंदरी बना करके उनको अपने भवन में भेजे। अब तो सारे लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, क्या अद्भुत कर्म है, किसी को हाथ टच करके गला उतार देना, सर काट देना, इसी दर्जी की तो हाथ छू दिए तो बिल्कुल बुढ़ाठा जवान बन गया, इसी माला वाले को कुछ बोल दिए तो राजा बन गया, अरे उसी की तो हाथ लगाए वो तो सुंदरी बन गई, ये क्या हो रहा है, सब सबके मन में आ रहा है, अगर हमको थोड़ा छू देते, नहीं सह में क्या छुएंगे, अगर काम बने वो नहीं छुएंगे तो हम उनको छू लेंगे, तब तो कुछ हो जाएगा। सारे बूढ़े विचार कर रहे थे, बूढ़े विचार जो भी कर रहे थे, चलो तो इस प्रकार सब मन में लेकर के, और इतने देर तक उनको देखते देखते, उनके बारे के सोचते सोचते, उनके नजदीक सब आ रहे थे, नजदीक आ रहे थे, उनके लीला, उनके बातचीत, उनके आचरण देखकर बहुत तन्मय होकर उनके पास पास आ रहे हैं सारे नगरवासी। अब आगे बढ़ रहे हैं, तब श्याम सुंदर ने किसी एक नागरिक को पूछे, ये जो भोजराज ने जिस धनुष को पूजन करने का किए थे, धनुष कहाँ है, किधर है, ना वो धनुष तो राजभवन के पास है, राजभवन के पास है ना, और क्या, विशाल प्रांगण है, बहुत भारी धनुष है। सारे गोपों के मुख से बहुत प्रशंसा सुनी थी इस धनुष के बारे में, जो भगवान शंकर के त्रिपुराग्न पिनाक था, पिनाक धनु, उसको तो उन्होंने महाराज निमि को दिए थे, जिसको त्रेता युग में भगवान राम ने तोड़ दिए जनकपुर में, लेकिन जो वे वृषभ ध्वज के जो आपने निजी धनुष था, उसको आपने प्रिय शिष्य परशुराम को दिए थे, और परशुराम ने उनको कंस को दिया था, उस संभव धनुष को ला करके कंस ने अपना रख करके पूजा कर रहा था, बहुत भारी धनुष है। इस बात को सुने थे सब बालक, सबका मन में बड़ा उत्सुकता, हम ये धनुष देखेंगे, कान्हू चलो धनुष देखेंगे, दाऊ चलो धनुष देखेंगे, अरे चलते तो हैं, नहीं जल्दी चलिए धनुष देखना है। सज धस करके अभी नए कपड़े पहने, माला पहने, चंदन भी लगाए, अब राजभवन की ओर चल रहे हैं, सारे लोग साथ में चल रहे हैं, और लोगों को पूछ रहे हैं, कई बार रास्ता पूछना पड़ा, किधर है, किधर जाएंगे, लोग भी धनुष का वर्णन कर रहे थे, वो पूछ रहे थे धनुष यज्ञ क्या होता है, ना धनुष यज्ञ क्या होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी साल दो साल में एक बार महाराज की इच्छा हो और राजपुरोहित को बुलाकर करते ना, वो क्या होता है, कैसे होता है, ना होता क्या है, कि महेश्वर यज्ञ होता है, हमारे मथुरा के जो अधिनायक है भूतेश्वर हैं, तो भूतेश्वर का खूब भारी अभिषेक पूजा होगा, बहुत पशु बलि चढ़ाया जाएगा, बलि चढ़ाते ना, हाँ खूब बलि चढ़ाते हैं, खूब बलि चढ़ाते हैं, और इधर सारे वेद स्तुति वाद्य घोष लगा करके बड़े माला कपड़ा दे करके धनुष को पूजा किया जाएगा, बहुत कुमकुम सिंदूर लेकर के खूब माला चढ़ा के पूजा किया जाएगा। तो शाम के समय फिर इस 100 भार धनुष को उठा करके रंगशाला में लाया जाएगा, स्टेडियम में। तो फिर क्या होगा ना, राज आदेश के अनुसार पूरे नगरवासी A to Z सबको आना पड़ेगा, कंपलसरी। नहीं आएंगे तो राजदंड होगा, आना अनिवार्य है सबको। फिर ना फिर क्या होगा, पूजा के बाद महाराज ने घोषणा करेंगे, राज की घोषणा होगा कि कोई है इस धनुष को उत्तोलन करने वाले, तो कोई आता था ना, कोई नहीं आएंगे, ये धनुष कौन उठा पाएगा, इतने भारी धनुष को कौन उठा पाएगा, कोई नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे। 3 बार घोषणा के बाद कंस महाराज बोलते थे, अगर कोई आए तो अगर उठा ना पाए तो उसको धनुष को बलि दिया जाएगा, तो उसको सुनकर तो कोई नहीं आते थे। तो फिर क्या होता था ना, कंस महाराज स्वयं जाते थे ना, कोई नहीं थे मथुरापुरी में ना, कोई नहीं जाते थे। हम लोग सुने थे बड़े बूढ़े से, अगर उनके ससुर साहब जरासंध होते तो वो शायद उठा लेते, लेकिन ससुर जी तो नहीं आते, बोले मेरे जामाता का घर में क्या जाऊं, उनके धनुष वही खेल करने दे। तो फिर क्या होता था, तो फिर महाराज स्वयं उठ के जाते थे, जाकर के बड़े भारी परेशानी पसीना में लथपथ होकर कुछ उठाते थे, उठा करके धनुष को बड़े परिश्रम लगाकर उसमें जिया चढ़ाते थे। डोरी चढ़ाने के बाद फिर क्या करते थे ना, फिर तो बाण लगाते थे ना, बाण लगाते उसका मतलब क्या, धनुष किसको बाण चलाते हैं ना, चलाते ना, कोई लक्ष्य क्या है ना, लक्ष्य क्या है। जिस नागरिक ने बता रहा था उनके स्वर दबने लगा, आंख में आंसू आ गया, वो बोलने लगा क्या करूं, हमारे निष्ठुर महाराज ऐसे हैं, धनुष उठाएंगे पूरे स्टेडियम सारे गैलरी खचाखच भीड़ होता था, धनुष उठा करके दे छोड़ देंगे बाण, पता नहीं तत्क्षणात दर्शक के बीच में कोई अर्थ चित्कार करके गिर पड़ेगा, कौन बलि जाएगा किसको पता, आने का सबको कंपलसरी है, लेकिन किसी का काल होगा, बलि चढ़ेगा किसी को पता नहीं, डर के मारे कोई नहीं जाए, नहीं एब्सेंट पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा, राजदंड सबको आना पड़ेगा। ऐसे धनुष यज्ञ हैं, कई लोग ऐसे कहते कहते अपने को घृणा मानने लगे, इतने सुंदर सुंदर नवकिशोर सलो ने दोनों लड़के को बुलाया अपने रथ भेज करके, धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया, जरूर उनको ऊपर तो बाण संधान उन्हीं के ऊपर करेगा, जरूर कंस के मन में यही बात था कि हो ना हो कूड़ा पड़े हाथी से बच जाए तो महामल्ल है, अगर मल्ल में बाई चांस को इधर उधर फिसल जाए इधर उधर करे तो अंत में धनुर्यज्ञ तो करूंगा मैं ही, सुसंधान करूंगा, मेरे हाथ में मर्डर कर दूंगा, ये विचार लगाया था उन्होंने। तो लेकिन हे कहां, अरे दूर राजभवन के पीछे, बिल्कुल राज आवास के पीछे बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है, वहां रखा गया है, उनके लिए तो सशस्त्र प्रहरी, कम से कम सैकड़ों सशस्त्र प्रहरी, कई टुकड़े सैनिक 24 आवर प्रमाद भीन होकर के उसको देखरेख कर रहे, ड्यूटी कर रहे हैं, न फिर न कोई अंदर ना जा सके, उसको छूना तो मुश्किल है ना, फिर कोई देख बाहर से, गेट के बाहर से देख सकते हैं, बड़ा गेट है, गेट के पास में बड़े सिक्योरिटी टाइट है, वहीं से देख सकते हैं दूर से, बस वहीं से हाथ उठा प्रणाम कर लो, अजड़े बांध के चले जाओ, भल से देखने नहीं ना, वहीं देख सकते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बताओ, लोग अगर पास में जाना नहीं चाहते, बोले कंस का आवास निकट है, अगर वो देख लेगा, बोला उन्हीं लोग लेकर आया था उनको, तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बता देता हूं, आप जाइए, हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, दूर से देखेंगे बस। तो पूछते गए, थोड़ा टाइम लगा, भले कई जगह हम पूछते पहुंचे, ओ यही दरवाजा दिखाई पड़ रहा है, यही तो है। तो भद्र बोल रहा है, इकबाल तो क्या धनुष इतनी भारी है, कोई नहीं उठा सकते, क्या हमारा गांव के गिरिराज से ज्यादा भारी है, कौन तो उसको उठा दिया, उससे ज्यादा भारी है क्या, अगर भारी है हम सब मिलकर उठा लेंगे, उसको तो अकेला उठाया था, हम मिलकर उठा लेंगे। तो तेजस बोलते, अरे चुप करो, दाऊ भैया है ना, वो उठा देंगे। तो अर्जुन बोल रहा, नहीं झगड़ा मत करो, लाला को नहीं जानते, वो झगड़ेगा, उनको पहले दे दो उठाने के लिए, अगर नहीं उठा तो हम मिलकर उठाएंगे, नहीं तो सबके साथ लड़ेगा, मैं उठाऊंगा। जानते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है, जो हट लिया वही अड़ेगा, तो पहले उनको उठाने दो, देखेंगे नहीं उठा पाएगा तो हमें साथ लगा देंगे उसे, क्या करें, पहले तो उनको दो। ऐसे आपस में बातचीत करते जो नगरवासी सुनने भी क्या बोल रहे, बोला 7-5 साल के बालक को बोलता है हम मिलकर उठा देंगे, उसको उठा देंगे। अरे जिनको महाबली महाराज कंसो घंटों लग जाता है पसीना में लथपथ होकर उठाते हैं, बाकी कोई जनपद में नगर में कोई नहीं उसको उठाने वाला, ये बालक तो ऐसे उठाते हैं, ऐसे बात करते चले जा रहे हैं। लेकिन बात करते करते बढ़े, बोले ओ यही तो गेट है, नहीं गेट है हम नहीं जाएंगे अभी, आप जाओ देखो दूर से देख कर आ जाना, बड़े सिक्योरिटी है टाइट, अंदर नहीं जाने का। अच्छा तो कुछ बोलते हैं कि क्या पता है सिक्योरिटी उनको रोक सकते हैं, अगर घुस जाए वो तो, घुस जाए तो क्या होगा ना पता नहीं, उनके करस्पर्श अगर हो जाएगा धनुष को तो धनुष भी तो कुछ बन सकता है, क्योंकि वो धनुष उनके हाथ तो जहां जहां लगा सब बदल हो गया, अदल बदल हो गया, जहां हाथ टच किया सब कौन कौन बन गए, सब क्या क्या बन गया। अब धनुष में उनका हाथ लग जाए स्पर्श कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धनुष तो कोई जड़ धनुष तो नहीं हो, तो साक्षात शंकर के धनुष है, अगर वो छू दे तो क्या होगा पता नहीं। अरे काहे के बेकार बकवास करे, अंदर थोड़ी जा पाएंगे, इतने हैवी टाइट सिक्योरिटी है उनको छोड़ देंगे, इतने दूर में रखा गया यहीं पकड़ कर पिटाई कर निकाल देंगे उनको, थोड़ी अंदर जाने देंगे, कितना बड़े बड़े गेट देखा नहीं, चलो देखते हैं गेट उनको रोक देगा, चलो देखते हैं। सारे नगरवासियों की भीड़ थोड़ा दूर देख रहा है और सारे बच्चे बड़े उत्साह उत्सुकता में दौड़ पड़े जैसे गेट को देखे, सारे जो बड़े बड़े सिक्योरिटी सिपाही सशस्त्र अस्त्रधारी गेट पर खड़े थे धनुष को देखभाल करने वाले सब देखे, उनके मन मोहित हो गया, इतने सुंदर सुंदर सलोने छोटे छोटे बालक, लगता है कि मथुरा वाले तो नहीं है, इस नगर के सिटी के तो नहीं है, गांव वाले हैं कहीं के, गंवार लड़के हैं बेचारे, सज धस कर आज ही कपड़ा पहने लगता है, क्योंकि उनके ठाणी से चलता जिंदगी से कभी नहीं पहने थे, आज ही पोशाक पहने, चलो नए आए हैं सज धस करके बड़े सुंदर दिखते हैं, अगर थोड़ा दो कदम आगे बढ़कर देखे नए तो है थोड़ा देख ले क्या है, बच्चे तो है कहां जाएंगे, डांट देंगे आगे बढ़ से डांट देंगे, यहीं पेशाब कर लेंगे क्या है, हम इतने बड़े तागड़े हैं बच्चे हैं कहां जाएंगे। तो उनको देख करके असलियत था, इतने रूप से मोहित हो चुके थे उनके सुंदरता, कितने सुंदर बालक है, इतने निष्ठुर सशस्त्र सिपाही के दिल पिघल गया था, वो बोलते थोड़ा आने दो ना दो कदम आगे, देखो रे बेटा देखना चाहते हैं यहीं आकर देख लो ना, मेरे पास में खड़े आगे नहीं जाना, देखो यहीं खड़े कर देख लो। और जो छोटे कुमार था श्याम सुंदर, तू थोड़ा आगे जाना चाहता है, देखो यहीं तक जाकर देखना, इतने सुंदर तो सबका बोल्ड आउट कर दिया था। अब वो सिपाही कुछ कहे बेटा वहीं से देखना, वहीं से देखना, कहते कहते बोलते बोलते इतने में दौड़ पड़ा जा करके वेदी में चढ़ गया। अरे हाँ हाँ रुको रुको छूना नहीं, अरे 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 कहे सारे सिपाही दौड़ पड़े, इतने में तो जाकर चढ़ ही गया, दूर में रखा था इतने तेज से दौड़ के गया, सारे सिपाही अरे रुको पकड़ो क्या करेगा, धनुष को पकड़ लिया करके भागे, वो भाग कर आकर वेदी के पास पहुंचे, तब तो टाइम लगेगा ना, इतने टाइम तो यथेष्ट था। देखते देखते बाएं हाथ में इस धनुष को उठाया, दाहिने हाथ में दबा करके पैर में दे दबाते गया, खींचते गया, पूरा मंडलाकार कर दिया, डोरी चढ़ा करके दे खींच लिया, खींचा तो खींचा, अरे क्या कर रहा है, बिल्कुल उनके हाथ में मंडलाकार बन गया, मंडलाकार क्या बना, देखते देखते इतने भारी शब्द हुआ टूट गया, इतने भारी शब्द हुआ कि पूरे धरती भूमिकंप हो गया, हिल गया, पूरे मथुरा नगर के जितने भवन थे सब हिल गए, जितने गौशाला में पशु थे सब भाग गए आवाज करके, जितने आसपास में पेड़ में शाम हो चुका था, जितने चिड़िया बैठे थे सब चीख करके गगन में उड़ गए, इतने भारी शब्द हुआ, जो सशस्त्र सैनिक दौड़कर जा रहे थे वो कान में हाथ देकर सब गिर पड़े जहां तहां, क्या हुआ, आग बंद करके कान बंद कर जहां तक गिर पड़े, इतने भारी शब्द हुआ। पास में कंस महाराज का राजभवन था, आपने राज्यसभा में बड़े बड़े मंत्री और उनको लेकर मंत्रणा में थे कि कल क्या करेंगे, बच्चे आ चुके हैं मथुरा में, भारी मंत्रणा में थे। ऐसे भीषण शब्द हुआ कि उनके राज सिंहासन का छत्र टूट करके गिर पड़ा। कंस महाराज तो इस शब्द सुन करके भारी सिंहासन में चौंक करके कूद पड़े, क्या हुआ करके, बिल्कुल जंप करके बाहर पड़े, उनका मुकुट सर से निकल करके वो दूर पड़ा, राज मुकुट निकल गया, स्वयं उठ करके पसीना गम निकल गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं, इतने भारी ये हुआ। यहाँ पे मथुरा के आउटस्कर्ट में जो ब्रजराज और गुप्त थे, इतना भारी शब्द हुआ क्या हुआ, सब पूरे नगर में आश्चर्य खेल गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और इतने में कंस बैठकर बोल रहा है कि पता लगाओ, ये दोनों बालक मथुरा में आ चुके हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, अभी तक तो खबर किसी को पुलिस रिपोर्ट आया नहीं था, क्या कैसे हो चुका है, दोपहर से निकले थे, अभी शाम के बीच में 2 घंटा में क्या नाटक किए हैं, अभी रिपोर्ट मिला नहीं, पता लगाओ क्या हुआ क्या हुआ, पता लगाना क्या। अब इतने बीच में जो सिपाही लोग दौड़कर जा रहे थे, जब देखे धनुष टूट गया, अरे बाप रे बाप, सबका ब्लड सूख गया, किसी का शरीर में ब्लड बिल्कुल सफेद रंग हो गए, सारे ब्लड सूख गया, बिल्कुल सत्ता पड़ गए, 2 मिनट तक तो जड़ भर गए, वो लोग क्या करे, धनुष टूट गया, राजा क्या करेगा हम लोग को, हमको सबको तोड़ देगा, वो तो मार देगा, इतने सारे सिपाही है, अरे ये बच्चा जाकर तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, अरे पकड़ो रे मारो रे, और कोई उपाय नहीं, उसको पकड़ कर सारे बच्चा को पकड़ के ले लेंगे, कोई भाग ना जाए, सबको लेकर राजा के पास में दे देंगे, यही तो एक उपाय बचा, और क्या करें, माफी मांगेंगे, दौड़ गए सारे शस्त्र उठा करके, लेकिन कहां जाएं, धनुष को तोड़ करके भगवान ने दाऊ भैया को देख रहे थे आकर के, ऐसे एक खंड फेंक दिए, ऐसे हस्त बोले बहुत जीर्ण होते, पुराना हो गया था, मैं क्या करूं, मैं इधर टेस्ट कर करके तोड़ गया, बहुत पुराना था, दम नहीं था उसमें, ऐसे हंस करके इसे तुच्छ वस्तु फेंक दिए थे, दंड उठा फेंक, देखे कि सकड़ों सशस्त्र प्रहरी दौड़ रहे हैं, पूरे प्राणान तक मारेंगे पकड़ेंगे, मारेंगे पकड़े दौड़ रहे हैं, दाऊ भैया के आंख लाल पड़ गए, हैं मेरे अनुज को पकड़ने आ रहे हैं, किसे पकड़ने आएंगे, और इधर गेट पर सब खड़े थे जितने बालक, वो भी आपने अपने लाठी पकड़ लिए, अरे कुछ नहीं आने तो दो आने, बलराम जी भी नहीं गए, कृष्ण अकेले, एक खंड तो हाथ में था, एक खंड में हाथ में था, उठा करके प्रयोग किए, अरे ऐसे दंडधारी थे, एक भंगा हुआ धनुष हाथ में लेकर के, साक्षात जमराज जमदंड हाथ में लेकर अकेले खड़े होते तो त्रिभुवन कंपमान हो जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन आज ये एक भग्न दंड धनुष आपने हाथ में लेकर के, अरे ये तो उनके हाथ में दंड देख करके साक्षात जमराज भी कंपमान हो जाएगा, ये उनके मास्टर है तो उनको नहीं क्या हो जाएगा। तो जितने सैनिक गए, पलक झपकते ही किसी का सर फोड़ा, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर टूटा, बस सब पट गए, क्षण भर में सबको मार करके सुला दिए, सारे रक्ताक्त तो हो करके इसी अवस्था किए थे। एक सिपाही उनसे भागकर दौड़कर चला था मेन गेट से जैसे तैसे, कंस महाराज ऑर्डर दे रहे थे जल्दी जाओ पता लगाओ क्या हो रहा है, तो इसे गुस्सा होकर आवाज दे रहे थे, सामने पेश हो गया, बिल्कुल रक्त से अपाद मस्तक लथपथ, सर फूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, इतने जख्म हुआ है, बिल्कुल इधर उधर सब मन से निकल गया है, ऐसी अवस्था में महाराज महाराज करके जाकर के दुम उनके चरण में गिर पड़ा, क्या हुआ। अब प्राण छोड़ते छोड़ते पहले से बड़े ध्यान से बोला, वो दोनों लड़के हैं, कहाँ है दोनों लड़के, रंगशाला में, रंगशाला में आ गए, धनुष तो नहीं छुए, छुए नहीं, तोड़ दिए, तोड़ दिए धनुष, धनुष तोड़ दिए, कैसे आप क्या कर रहे थे, ना क्या कर रहे थे, सारे सिपाही को मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, सांपुल आपके सामने आपके सैंपले सैंपल पेश है, आप देख लीजिए क्या कैसे मार रहे हैं। महाराज बचाइए। आप कम से कम तो पसीना धमाधम निकलने लगा। सेनापति तुरंत जाओ, सशस्त्र सैनिक लेकर जाओ, कोई बालक बच नहीं निकले, जैसे सबको पकड़ कर ले आओ। उद्धत हो गए बालक, धनुष तोड़ दिए, धनुष तोड़ गया, कंस का अभिमान का मेरुदंड तोड़ गया। हो तो हार्ट बीटिंग इतने जोर से बढ़ गया, ब्लड प्रेशर इतने हाई हो चुका था। अब दो सेनापति निकल पड़े। अरे घर के भवन के स्टेडियम के अंदर लड़ाई करना था दो बच्चों से, यहां कोई गजारोही अश्वारोही तो जरूरत नहीं था, कोई तोप कमान की जरूरत नहीं था, धनुष बाण भी जरूरत नहीं था, यहां तो लाठी तलवार लेकर के दौड़ो, सामना सामने लड़ाई करना था। हाँ, 2-4 हजार सैनिक लेकर चल पड़े। हाँ, बड़े पूरे समग्र देश में अजय सेना कंस के संसार में प्रसिद्ध है, बड़े प्रसिद्ध अजय सेना उनको लेकर के पहुंचे। पहुंच करके जाकर जैसे अंदर को घुस गए, उनका स्पेशल गेट था, घुस गए, घुस गए तो इधर से तो एक दंडधारी थे दाऊ जी, दूसरे दंड पकड़ लिए नीचे से फेंक दिए थे, दूसरे फिर उठा लिए तो और कहां, इधर से जितने बालक थे गोप बालक सारे लठी पकड़ लिए। कनु हम आ रहे साथ में, डरना नहीं, हम है साथ में। तो श्याम सुंदर ने बोले, अरे नहीं आप मत आओ, यहीं खड़े रहो, ये सब राक्षस है। तो बोले, अच्छा राक्षस है क्या, तब कोई बात नहीं, गन डाउन कर दे, सब लाठी डाउन कर दी। बोले क्यों, क्योंकि जानते हैं राक्षस लोग तो ऐसे मोटे होते हैं, काले, बहुत बड़े शरीर वाले होते हैं, बहुत आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, उछलते हैं, लेकिन शक्ति होता है थोड़ी उनके पास, साढ़े थर्माकुल बड़ी उनका है, कुछ होता नहीं। अगर उनका पास थोड़े शक्ति होता तो वह सबसे सुकुमार, सबसे कम ताकत वाले या हमारे कनु उनको अकेला मार देता, सारे रेकर्ड हम देखते देखते है, बराबर मारता रहता है उनको, तो उनमें तो बल नहीं होता, तब तो फिर हमको कोई जरूरत नहीं, चलो ही मार देगा, अकेला मसल देगा, जरूरत पड़े तो राक्षस ना होते तो हम जाते, राक्षस है तो थोड़ा हमारा जाना कोई जरूरत नहीं। तब अब तो दो दंडधारी थे, सारे चिल्ला चिल्ला करके सैनिक दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, इधर से तो मृत्यु की वर्षा हो रहा है, केवल चीख, प्राण भरा आतुर चित्कार, प्राण छोड़ते समझ चित्कार, और दुम दुम प्रहार ऊपर से, सारे सर फूट रहा है, हाथ तोड़ रहा है, चिल्ला चिल्ला करके पड़ रहे हैं, ऊपर से तो चढ़ना ही नहीं था, यहां से मृत्यु वर्षा हो रहा है, बाहर जाएंगे, बाहर तो देखेंगे दो लड़के इधर ऐसे हल्ला मचा रखे हैं, पड़े कर मचा रखे हैं, यहां तो सैकड़ों लड़के लाठी लेकर खड़े, बाप रे बाप, जाओ मत इधर, ये दो ही सैंपल है इसे हल्ला कर रखे हैं, तो सैकड़ों सैंपल लाठी लेकर खड़े, देखते डर के मरे भागते हैं। उसी स्टेडियम के अंदर रन रेट वही के अंदर भागना दौड़ना था जो करना था। हाँ, आओ दौड़ते दौड़ते सारे घड़ी के अंदर हजारों सैनिक एक के ऊपर एक लाश बिछ गए, रक्त इतने भर गया, जब पानी निकलने का प्रणाली था ना, पानी का नाला, भल 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 भर करके रक्त बहकर जा रहा था, होश पाइप जैसे निकल देने से जाता है, ऐसे रक्त बहकर जा रहा था, तो पूरा शांत हो गया, कोई नहीं बचे। अपने हाथ से धन भंगा हुआ धनुष दंड फेंके दोनों भाई, वापस आए, सारे ग्वाल वाले एक एक करके सबको आलिंगन किए, पूरे वस्त्र से रक्त टपक रहे थे, लथपथ रक्त टपक रहे थे, सभी उनका आलिंगन किए, सबके कपड़ा भी रक्त तो हो गया, खराब हो गया, बोले चलो खराब कैसे धोते हैं, पास में बहुत सुंदर जलाशय पुष्करणी था, जाकर के सारे कपड़ा उतार कर फेंके हुए राजा के पोशाक, सारे माला मुला चंदन सब गए, सारे वहीं विसर्जन कर दिए, सारे विसर्जन करके तालाब में जाकर खूब मलमाल कर धो कर जो पुराना पटका कछनी उसको फिर पहन लिए सानी, जैसा था जैसे बेस आए थे नंद बाबा से आते समय में, ठीक ऐसे रूप हो गए, अब चल पड़े जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे हुआ चल पड़े। अब कंस को मैसेज देने के लिए कोई बाकी नहीं रहा, सब वही स्वाहा हो गए, सेनापति लगात सारे खत्म, कंस बैठ कर देख रहा है कि उसको पकड़ के ला रहे हैं, अरेस्ट करेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे, कोई मैसेज देने वाला आता ही नहीं, वो खबर ले रहा है, किसी को भेज रहा है नहीं, क्योंकि जाएंगे कौन, जो जाने के लिए बोले जाओ मत, यहाँ सब मर रहे हैं पढ़ करके, देख ले बाहर से जब केनाल जा रहा था ना नाला, नाला के रक्त को देखकर भाग जा रहे थे। बोले हम नौकरी से जाए हम नहीं जाएंगे। शाम हो रहा था, सबको याद आया नहीं चलो बाबा जी याद करते होंगे जल्दी चलो, जल्दी पदक्षेप से अब सब निकल रहे थे जल्दी जल्दी करके। सारे देशवासी मथुरावासी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। सभी का मन से सभी के मुख से जय घोष निकलता था, भगवान वासुदेव की, भगवान वासुदेव की। अब दो घड़ी में उन्होंने क्या नगर भ्रमण किए, पूरे मथुरा जनपद के जन जन के जननायक बन बैठे, भले राजा बने, सबके हृदय के सिंहासन पर ईश्वर बन बैठे। आज निकले जा करके पहुंचे, ये नंद बाबा बड़े परेशान थे, कहां गए बेटे लोग मेरे, रात हो गया इतने बड़े भारी आवाज हुआ, कोई जाएंगे ढूंढने के लिए, इतने में देखे कि लड़के आ रहे हैं, वो तो आ गए आ गए। आए जा करके बाबा के गोद में बैठ गए, क्यों इतने लेट किया, कोई झगड़ा झगड़े तो नहीं किया, कोई बदमाशी तो नहीं किया, नहीं बाबा बहुत अच्छा था मथुरा, कुछ नहीं किया। अब जब कनू ने बोलना शुरू किया, नंद बाबा जानते हैं कि बोलेगा तो घंटों बोलते रहेगा, बोले नहीं नहीं थक गए चलो अभी प्रसाद खाओ। गांव से दूध लेकर आए थे पियोर, बना करके राबड़ी मार का खीर बनाए थे पायसम, गरम गरम खीर सबको सर्विंग किया गया और खा करके जमुना किनारे बढ़िया सा हवा निश्चिंत सो गए इस रात, त्रयोदशी की रात को। उसी रात को मथुरा में नगर में कोई भी व्यक्ति नहीं सोया, पूरे नगर सारे लोग अनिद्रा, केवल सिटी के बाहर में वही लोग सोए थे। अरे वो सोए नहीं क्या कर रहे थे ना, उन्हीं के चर्चा उन्हीं के चिंता में पूरी रात बिता। अभी आपके समय भी बीत चुका है, अभी देखेंगे क्या कर रहा है, कल कंस को मरवाएंगे, है ना नहीं।